साधना का नौवां दिन पूरा हुआ। अब शिविर का केवल एक ही दिन और बचा है। शिविर समापन होने के पहले एक बात और बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यहां जो ये विद्या सीखी है, क्या विद्या सीखी है? अपने सहज स्वाभाविक सांस के प्रति सजग रहना, ये विद्या सीखी है। और दूसरी विद्या ये सीखी कि अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से जानना, उनके अनित्य स्वभाव को समझते हुए समता में स्थित रहना। ये दो तरह की साधना जो यहां सीखी, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ हो? धर्म अगर जीवन में नहीं उतरता है तो समझना चाहिए कि धर्म नहीं है। फिर धर्म के नाम पर एक और धोखा, जैसे ये भी कोई कर्मकांड हो गया। 10 दिन के किसी शिविर में हो आए, हमने अपने बहुत से पाप धो लिए, हम बड़े निर्मल हो गए, हम संत हो गए, ऐसा एक ढोंग, कोई लाभ नहीं हुआ। धारण करे तो धर्म, जीवन में धर्म उतरने लगा कि नहीं उतरने लगा? इस साधना का जीवन में लाभ होने लगा कि नहीं होने लगा, वो इसी मापदंड से मापेंगे कि एक तो हमारा अपना जीवन पहले से बदल करके ज्यादा सुख शांतिमय जीवन होने लगा। व्याकुलता रहती थी जीवन में, अनचाही बात हुई तो व्याकुल हो गए, मनचाही नहीं हुई तो व्याकुल हो गए, वो व्याकुलता पहले से कम हुए जा रही है। हम स्वयं सुख शांति का जीवन जीने लगे हैं और दूसरों के लिए भी सुख शांति का वातावरण निर्माण करने लगे हैं। हमारी वजह से कोई व्यक्ति अशांत या दुखी नहीं होता, हमारी वजह से कोई भी व्यक्ति शांत ही होगा, सुखी ही होगा। ऐसा सचमुच होने लगा क्या? अगर सचमुच होने लगा, पहले थोड़ा थोड़ा ही होने लगा, पहले से सुधार हुआ, थोड़ा थोड़ा ही हुआ, पर सुधार तो होना चाहिए ना। कुछ भी सुधार नहीं हुआ, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और एक नशा सिर पर ये चढ़ा ले कि अब तो हम विपश्ची हो गए, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, तुम 1-10 दिन साधना करिए आए, बड़े धर्मवान हो गए अब तो हम, तो धोखा हो जाएगा, कर्मकांड हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। तो कैसे इस साधना को अपने जीवन में उतारेंगे, कैसे इस साधना का उपयोग अपने जीवन में करेंगे जिससे हमारे भी दुख दूर हो, हमारी व्याकुलता दूर हो, हमारी अशांति दूर हो, और औरों के भी दुख दूर होने में, अशांति दूर होने में, व्याकुलता दूर होने में हम किस प्रकार सहायक बन जाएं? समझे ये साधना क्या है, खूब अच्छी तरह समझ करके जाए। एक ओर अभ्यास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, दूसरी ओर बुद्धि के स्तर पर समझ भी रहे हैं कि क्या साधना है। भारत बहुत पुरातन देश, ऋषियों का देश, मुनियों का देश, संतों का देश, सत्पुरुषों का देश, महापुरुषों का देश, अरहंतों का देश, बुद्धों का देश, इतने ऋषि हुए भारत में। ऋषि शब्द का अर्थ ही ये है कि ये बड़े वैज्ञानिक थे, रिसर्च साइंटिस्ट जिसे कहते हैं, वैज्ञानिक थे जो सत्य का अनुसंधान करने वाले थे। आज का पश्चिम का वैज्ञानिक सत्य का अनुसंधान करता है, बाहर बाहर की वस्तु, स्थिति, घटना, इन सब का अनुसंधान करता है, टुकड़े कर करके उसकी सच्चाई को खूब अच्छी तरह जानता है और उसका उपयोग करता है, अपनी जान सही उपयोग करता है कि लोगों की सुख सुविधा बढ़े। लेकिन सुख सुविधा थोड़ी सी बढ़ती भी है उसके साथ साथ हानि की बात बहुत हो जाती है। भारत के ऋषियों ने उसे महत्व नहीं दिया। अपने भीतर सत्य का अनुसंधान हो तो ऋत शब्द का अर्थ ही यही, ऋषि शब्द का अर्थ ही यही कि जो ऋत की एषणा करे, गवेषणा करे, पर्यवेषणा करे, माने ये ऋत क्या है, कुदरत का कानून क्या है, उसको अनुभूति के स्तर पर जाने, तो ऋषि हुआ। किस लिए गवेषणा करते हैं ऋत की? ये सर्वसामान्य बात है कि कोई दुखी नहीं रहना चाहता, कोई व्याकुल रहना नहीं चाहता। प्राणी मात्र का स्वभाव है कि कैसे व्याकुलता से बचे, तो व्याकुलता से बचे तो कोई भी समझदार आदमी इस बात पर चिंतन करे कि व्याकुलता से कैसे बचूं भाई, तो एक बात बहुत स्पष्ट मालूम होगी कि मेरी व्याकुलता का जो कारण है वो कारण दूर हुआ मेरी व्याकुलता दूर हो जाएगी। तो व्याकुलता से बचने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मेरी व्याकुलता का जो कारण है उसे कैसे दूर करूं। कठिनाई ये होती है कि व्याकुलता का सही कारण क्या है ये समझ में नहीं आता, तो व्याकुलता का कारण बाहर के किसी व्यक्ति में देखता है, किसी वस्तु में देखता है, किसी घटना में देखता है, किसी स्थिति में देखता है, ये ऐसा हो गया इस वजह से मैं व्याकुल हो गया, ये अनचाही बात हो गई मैं व्याकुल हो गया, यह मनचाही बात नहीं हुई मैं व्याकुल हो गया, इस आदमी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया मैं व्याकुल हो गया। तो अपनी व्याकुलता का कारण बाहर की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थितियों में, घटनाओं में देखता है। तो अब उसके समझ में यही आया है कि अपने व्याकुलता के कारण को दूर करो, तो बाहर की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थितियों को अपने मनोनुकूल कैसे बना लें। सारा प्रयत्न, सारी ऊर्जा, सारी मेहनत जीवन भर इस काम में लगा रहता है, कैसे ये मनोनुकूल हो जाए, कैसे ये मनोनुकूल हो जाए। हर व्यक्ति कहता है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरी ये पत्नी जरा से सुधर जाए फिर देखो हमारे परिवार में बड़ी शांति आ जाएगी। पत्नी से पूछो, वो कहे ये पति जरा सा सुधर जाए फिर घर में बड़ी शांति आ जाएगी। बाप कहता है बेटा सुधर जाए, बेटा कहता बाप सुधर जाए, भाई कहता भाई सुधर जाए, पड़ोसी कहता पड़ोसी सुधर जाए, दूसरा सुधर जाए, दूसरे में कुछ ना कुछ खोट है। क्या खोट है? कि वो मेरे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करता। सीधी बात ये, मेरे मन के मुताबिक जो काम है वो तो अच्छा, और मेरे मन के मुताबिक जो काम नहीं है वो बुरा। तो मेरे मन के मुताबिक काम क्यों नहीं होता? तो बड़ा बल लगाता है ये आदमी, मेरे मन के मुताबिक काम कैसे करने लगे, बड़ा बल लगाता है। अरे आदमी अपना मालिक है, अत्ता ही अतनो नाथो, दूसरे का मालिक नहीं भाई, तुम दूसरे को कैसे बदल लोगे, नहीं समझता, बड़ा जोर लगाता है। अच्छा किसी तरह सफल भी हो गया, उसे बदल लिया, तो अब क्या गारंटी है कि ये तो बदल गया अब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे मन के विपरीत काम करने नहीं लगेगा? क्या गारंटी है? कोई दूसरा करने लगेगा, उसे बदलोगे, तीसरा करने लगेगा, उसे बदलोगे। अरे कहां मन चाही होने वाली है, सारे विश्व का कोई एक छत्र सम्राट हो जाए इतना शक्तिशाली, उसके जीवन में भी सारी मनचाही बात नहीं होती। मनचाही होगी कभी अनचाही होगी, अनचाही ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि जो मन चाही है वो पूरी होते ही मन का स्वभाव है कुछ और चाहने लगेगा, वो पूरी होगी कुछ और चाहने लगेगा। अरे तो सारी मनचाही कैसे पूरी होगी? तो कठिनाई आएगी ही, व्याकुल होगा ही। तो ये जो प्रयत्न बाहर बाहर की स्थितियों को बदल करके, व्यक्तियों को बदल करके मैं अपने दुखों से छुटकारा पा लूं, ये बड़ा गलत दृष्टिकोण ये हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। बात उनके समझ में आ गई कि हमारा दुख तो भीतर होता है ना, घटना बाहर घटती है, दुखी हम भीतर हुए, तो भीतर झांक के देखें कि दुख होने का कोई और भी कारण है क्या भीतर। जो आदमी अपने भीतर झांकना शुरू करेगा, भीतर की सच्चाई को देखने का जरा सा भी काम करेगा, उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई विकार जागा ना, घटना तो बाहर हुई, मैंने भीतर विकार जगा दिया, क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, राग जगाई, वासना जगाई, भय जगाया, अहंकार जगाया, कोई विकार जगाया। ये विकार जगाया तो व्याकुल हुआ, घटना वो की वो हो और मैं विकार नहीं जगाऊं, मैं व्याकुल नहीं होता ना। ये बात बड़ी जल्दी समझ में आने लग जाए कोई आदमी बिल्कुल तटस्थ भाव से भीतर की सच्चाई को देखना शुरू करने का पहला ही कदम उठाए तो ये बात समझ में आने लगेगी। मैं दुखी इसलिए हुआ कि भीतर विकार जागा, अब क्या करें, इस विकार से कैसे छुटकारा पाए। तो भारत के ऋषियों ने मुनियों ने यही खोज की कि विकार से कैसे छुटकारा पाए। क्रोध जागा है, व्याकुल हो गया है, क्रोध से कैसे छुटकारा पाए। अनेक प्रयोग किए गए, उनका अपना अपना लाभ हुआ। तो एक तो ये कि जब क्रोध जागा है और तुम व्याकुल हो तो किसी घटना को लेकर जागा है, अब उस घटना को भुलाओ और अपने मन को किसी और काम में लगा दो। किसी घटना को लेकर क्रोध जागा और तुमने उठ करके एक ग्लास पानी पिया तो तुम्हारा मन पानी पीने में लग गया, क्रोध अपने आप कम होता चला गया। लेकिन मुश्किल है, जब क्रोध जागता है तो किसको पानी पीना याद आता है, और पानी पिए जा रहा है और क्रोध जगाया जा रहा है, ऐसा भी होता है क्योंकि सारा मन उस पानी पीने में नहीं लगा, बहुत सा मन का हिस्सा तो उस घटना में लगा है जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है। तब तो और कोई बात में लगाओ, अच्छा गिनती गिननी शुरू कर दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो, अब तुम्हारा मन उस गिनती में लग जाएगा। मन को किसी तरह से और काम में लगाओ, जिस बात को लेकर के क्रोध आया है उससे हटाओ और किसी और काम में लगाओ। नहीं बात बनी, पहले तो गिनती गिनने को जी नहीं चाहेगा, गिन नहीं पाएगा, क्रोध से छुटकारा नहीं हुआ। तो एक रास्ता और ढूंढा कि हर व्यक्ति में एक ऐसी श्रद्धा पैदा कर दो, किसी देवी के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, किसी ब्रह्म के प्रति, किसी अल्लाह मियां के प्रति, किसी संत महापुरुष के प्रति, किसी के प्रति खूब श्रद्धा भरो, क्योंकि वो श्रद्धा इतनी गहरी है। अब जब कोई भी विकार जागे, क्रोध जागे, वासना जागे, भय जागे, ईर्ष्या जागे, जो जागे, उस समय मन को अपने उस उपास्य देव के प्रति, देवी के प्रति, अपने मन को उस ओर लगाने के लिए मन ही मन उसका नाम जपना शुरू कर दो। बार 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 एक दो तीन चार गिनती गिननी मुश्किल है, पानी पीकर के विकार से छुटकारा पाना कठिन है, लेकिन अगर सचमुच श्रद्धा है किसी देवी के प्रति, देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो अरे इसका नाम लेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएगा, ये बचपन से सिखा दिया, इसका नाम लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, तो बार 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 उसका नाम लेना आसान हो गया। अब नाम लिए जा रहा है मन ही मन, क्रोध जागा है, मन ही मन नाम लिए जा रहा है, क्रोध जागा है, नाम लिए जा रहा है, और इससे नहीं तो उसके रूप, उसका आकृति, उसका मन ही मन ध्यान करो, कल्पना करो, ऐसा रूप है, ऐसा ध्यान, उसका ऐसा शरीर है, ऐसी उसकी कल्पना, उसकी आकृति की, वो भी क्योंकि बहुत श्रद्धा है तो वो भी कुछ काम करेगी। धीरे धीरे एक पागलपन और चला, बात तो इसलिए थी कि अपने मन को जिस बात को लेकर के विकार जाग रहा है उससे कहीं और लगाएं, तो वहां लगाएं जहां हमारी श्रद्धा है, तो लगेगा मन नहीं तो लगेगा ही नहीं, उखड़ा रहेगा। और उसको बिगाड़ दिया इस तरह से कि अमुक देवता का, देवी का, ईश्वर का, ब्रह्म का बार बार नाम लेंगे, नाम लेंगे तो वो बड़ा खुश हो जाएगा और हमें दुखों से मुक्त कर देगा। ये नहीं समझा कि उस भक्ति के मारे हमने अपने उपास्य देव का या ईश्वर का अपमान कर दिया। मानो वो ऐसा गया गुजरा अहंकारी है कि उसको अपना नाम बड़ा प्रिय लगता है, वो नाम बार 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 सुनेगा तो फूल के कुप्पा हो जाएगा और हमको उतार देगा, हमको दुखों से दूर कर देगा। तो चले थे श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी उपास्य के प्रति और करने लगे उसका अपमान, समझा नहीं इसलिए। खैर, वो नाम जपने का काम किसी तरह से करता है, रूप का ध्यान करता है किसी तरह। कुछ लोगों को ये लगा कि इसमें क्या पड़ा है, कौन देवी, कौन देवता, कौन ईश्वर, कौन ब्रह्म आकर के हमको बचाता है, तो मन को किसी चिंतन में लगाओ, अच्छे चिंतन में लगाओ। तो क्या चिंतन में लगाओ, कोई चिंतन, एक तरह की फिलॉसफी, एक तरह की दार्शनिक मान्यता एक परंपरा में चलती है, बस उसी में लगाओ। ये आत्मा सत्य है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, कूटस्थ है, बाकी सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, ये शरीर भी अनित्य है, ये चित्त भी अनित्य है, जो गाली दे रहा है वो भी अनित्य है, सारा संसार अनित्य है, सब माया ही माया है, माया है, केवल यही सत्य है, यही सत्य है, ये नित्य है, सब बार बार चिंतन करो, क्योंकि ये दार्शनिक मान्यता बचपन से सुनता आया, बहुत प्रिय लगी, इसका चिंतन करने लगा तो जो क्रोध आया था उससे छुटकारा हो गया, विकार जागा उससे छुटकारा हो गया, मन को दूसरे काम में लगा दिया। अथवा ये ईश्वर है, ब्रह्म है, सब में समाया हुआ है, हर प्राणी में वही ब्रह्म समाया हुआ है, वही ब्रह्म समाया हुआ है, अरे किसके प्रति क्रोध करूं, किसके प्रति क्रोध करूं। अच्छा, क्रोध से, विकारों से बचने के लिए इस तरह का चिंतन, यूं भिन्न भिन्न प्रकार से विकारों से छुटकारा पाने का प्रयास भारत में किया गया, ऋषियों ने, मुनियों ने तरह तरह के तरीके निकाले। लेकिन भारत तो बड़ा महान देश है, ऐसे साइंटिस्ट हुए इस देश में, ऐसे वैज्ञानिक हुए जो गहराइयों में जाते चले गए, अपने भीतर सच्चाई को उन गहराइयों तक देख गए, ये सारा का सारा शरीर प्रपंच इसका एनालिसिस करते करते, विश्लेषण करते करते एकदम उस अवस्था पर पहुंच गए कि जहां सारा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु, उनकी तरंगे ही तरंगे, ऐसे ये चित्त क्या है इसको टुकड़े करते करते तरंगे ही तरंगे, ये चित्त वृत्तियां क्या है इसको देखते देखते तरंगे ही तरंगे, सारा अनुसंधान किया और सारा इसका चित्त और चित्त वृत्तियों का और शरीर का, इनका सारा अनुसंधान करके इसके परे की अवस्था देख ली। तो इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा कि ये जो नित्य अनित्य क्षेत्र है इसको भी पूरा जान लिया, कुछ अनजाना नहीं रह गया, और इसके परे जो नित्य है उसको भी जान लिया, तो सर्वज्ञ हो गया। ये छह इंद्रियां कैसे काम करती है, इनके विषय कैसे काम करते हैं, इस क्षेत्र को भी जान लिया, ये अनित्य का क्षेत्र है, छह इंद्रियां उनके अपने अपने विषय, ये सारा अनित्य का क्षेत्र है, खूब विवरण के साथ जान लिया, अनुभव से जान लिया, उसके परे चले गए, इंद्रियातीत अवस्था को जान लिया, तो सर्वज्ञ हो गए, सब जान गए। ऐसे जो भी व्यक्ति हुई हमारे देश में, उन्हें बुद्ध कहो, अरहंत कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, अनासक्त कहो, सर्वज्ञ कहो, चाहे जिस नाम से पुकारो, वो जो सब कुछ जान गए, उनके बात समझ में आ गई कि भाई जब जब हम कोई नाम जप करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, भजन कीर्तन करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, अच्छा कोई अच्छा ही चिंतन करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, तो मन का एक हिस्सा उस ओर जाता है, ये जो संज्ञा है, ये जो इंटेलेक्ट है, ये जो बुद्धि है, आज की भाषा में कहें तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये और किसी काम में लग गया, और किसी काम में लग गया, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है भीतर का, वो नहीं सुनता कुछ। क्रोध जागा था और हमने अपने ऊपर वाले मन को और कहीं लगा दिया, हमें लगा क्रोध चला गया, क्रोध चला नहीं गया, क्रोध का दमन हो गया, ऊपर हमने और लेप लगाने शुरू किए, और लेप लगाने शुरू किए तो वो क्रोध दबता 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 और नीचे चला गया, ऐसी वासना दबती दबती नीचे चली गई, ईर्ष्या दबती, जो विकार जागा था हमने ऊपर लेप लगा लगा करके उसके बोझ से उसको दबा दिया, अंतर मन की गहराइयों में चला गया। वो दिखता है अंतर मन की गहराइयों में विकार बढ़ते चले गए, छुटकारा नहीं हुआ, और ये विकार जो अंतर मन की गहराइयों में चले गए, ये स्लीपिंग वॉल्केनोज हैं, अनुशय सोए हुए हैं, कब जाग पड़ेंगे, ये ज्वालामुखी कब फूट पड़ेगा, नहीं कह सकते। हम दुखों से सचमुच मुक्त नहीं हुए, तो बात समझ में आई कि पलायन करने से, सच्चाई से दूर भागने से छुटकारा नहीं होता, सच्चाई का सामना करो, एक तरीका मिल गया उनको, सच्चाई का सामना करो, क्रोध आया है, क्रोध का सामना करो, बस क्रोध है ऐसा जानते रहो, क्रोध है इस समय मेरे चित्त में, क्रोध है, वासना जागी है तो वासना है, किसके प्रति है क्रोध, किसके प्रति है भय, किसके उससे आलंबन से नहीं, भय भय है, अब्स्ट्रैक्ट फियर, अब्स्ट्रैक्ट एंगर, अमूर्त भय, अमूर्त वासना, अमूर्त क्रोध, बस उसी को साक्षी भाव से देखो। ऐसा देखने वाला व्यक्ति देखता है कि जो विकार जागा था उसका बल कमजोर होने लगा। विकार क्यों बढ़ता है कि हम अंदर ही अंदर अनजाने में उसका संवर्धन करने का काम शुरू कर देते हैं, समझते नहीं कर क्या रहे हैं, अब संवर्धन का काम रोका, केवल देख रहे हैं, तो उसका बल कम होते होते जो विकार आया था वो हट गया, वो हटा सो तो हटा, मानो बाहर की के घटना से हमें क्रोध जागा, तो क्रोध जब जागता है तो वर्तमान क्रोध जो जागा है उसके साथ हमारे पहले क्रोध के जो संस्कार भीतर इकट्ठे हैं वो उभरने शुरू हो जाएंगे, उसके साथ आ जुड़ेंगे, हमारा क्रोध और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्रोध का स्वभाव है, हमारा ईर्ष्या का स्वभाव है, हमारा द्वेष का स्वभाव है, हमारा राग का स्वभाव है, उभरेंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्रोध और बढ़ेगा। अब हमने देखना शुरू कर दिया तो भले वो भीतर वाले भी उभरे तो नया आया था वो तो दूर हुआ ही, जो उभर करके ऊपर आए जिनकी उदीर्णा हुई वो भी थोड़े बहुत निर्जरा हो गई उनकी। अरे काम की बात मिल गई ना, नया क्रोध जागा था उसको भी दूर कर लिया, पुराने थे वो थोड़े से ऊपर आए उनकी उदीर्णा हुई उनकी भी निर्जरा हुई, उनका क्षय हुआ, जितना जितना हुआ उतना उतना छुटकारा हुआ, तो अनुशय भी थोड़ा सा निकाल लिया और नया जागा था उसको भी दूर कर लिया। अरे बड़े काम की बात मिल गई। और यूं करते करते जितना भीतर का संग्रह था जितना अनुशय था सारा ऊपर आ आ करके निकलता चला गया, सारा निकल गया, मुक्त हो गया। जब विकार का नाम ही नहीं रह गया तो दुख का नाम नहीं रह गया, बात खूब समझ में आई क्योंकि उन्होंने करके देखा। तो अब हर व्यक्ति को यही करना चाहिए कि जब कोई विकार जागे तो विकार के आलंबन से अपने मन को हटा करके केवल विकार को साक्षी भाव से देखे और कोई आलंबन में लगा करके पलायन नहीं करे, एस्केप नहीं करे, उसी का सामना करे। कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। जब क्रोध जागता है तो बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी कठिनाई होती है, ऐसे क्रोध सिर पर सवार हो जाता है। उस समय क्या क्रोध को देखे, अभिभूत हो गया वो क्रोध, भूत की तरह सिर पर सवार हो गया, अब क्या करे। तो कोई प्राइवेट सेक्रेटरी साथ रखे जो हमें याद दिलाए, देख मालिक तुझ पर क्रोध आया है, तू क्रोध को देख, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा अब तू क्रोध को देख, क्रोध आया है ना। तो प्राइवेट सेक्रेटरी कोई रखे कैसे सके, अच्छा रख भी लिया तो वो तो एक ही शिफ्ट काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे काम करेगा, और क्रोध के साथ हमारी लिखा पड़ी नहीं कि जब मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी ड्यूटी पर हो तभी आना, पहले पीछे मत आ जाना। अरे वो 24 घंटे में कभी आ जाएगा, तो 3 शिफ्ट के 3 प्राइवेट सेक्रेटरी रखें, और लेबर लॉज हैं उनको छुट्टियां देनी पड़े तो 4 रखें, तो 5 रखें, अरे कौन रख पाएगा। अच्छा समझ लो किसी ने रख लिया, प्रतिक्षण कोई ना कोई प्राइवेट सेक्रेटरी खड़ा है हमको जगाने के लिए, हमको होश दिलाने के लिए। क्रोध आया और प्राइवेट सेक्रेटरी कहता है कि मालिक क्रोध आया, आपको क्रोध आया, तो पहला काम यही करूंगा चांटा मारूंगा उसे, मूर्ख कहेगा मुझको सिखाता है, मैं जानता हूं ना क्रोध क्यों आया, तू कौन आया बताने वाला। क्रोध है ना भाई, उस वक्त होश नहीं रहता, बुद्धि काम नहीं करती, कुछ नहीं सुनती। अच्छा मान लो नहीं चांटा मारा उसे और कहा बड़ा अच्छा तूने बड़ा कल्याण किया, तूने मुझे याद दिला दिया जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, अब मैं क्रोध का ही दर्शन करूंगा, उसको साक्षी भाव से देखूंगा। अच्छा क्या देखेगा, क्रोध का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती, आंख बंद करके क्रोध को कैसे देखे कोई आदमी। जब आंख बंद करके क्रोध देखने का जरा सा भी प्रयास करेगा तो जिस बात को लेकर के क्रोध आया है, जिस व्यक्ति को लेकर के, जिस घटना को लेकर, बार बार वही मन में आएगी, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये बात ऐसी हो गई। अरे तो तू क्रोध को कहां देख रहा है, तू क्रोध के आलंबन को देख रहा है ना, और क्रोध का आलंबन तो क्रोध जगाने वाला और उद्दीपन करेगा, तो इस आग में और पेट्रोल डाले जा रहा है, तेरा क्रोध कैसे दूर होगा रे। आलंबन से काट करके केवल क्रोध को देखो, आसान नहीं होता। तो भाई जो आसान नहीं होता वो दुनिया के लिए दुख से मुक्त होने का उपाय कैसे हुआ, कोई एक व्यक्ति हो गया होगा इस तरह से मुक्त, आम साधारण आदमी कैसे होगा, तो रास्ता निकाला, उसके लिए रास्ता सिखाया। क्योंकि जो व्यक्ति इन गहराइयों में जाके सच्चाई को देख गया उसको ये समझ में आ गया कि मन में जब विकार जागता है, कोई विकार जागे, मन में जब विकार जागता है तो शरीर के स्तर पर 2 घटनाएं घटने लगती हैं, एक साथ घटने लगेंगे, क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, वासना जागे, जो जागे 2 घटना शरीर में घटने लगे, एक जरा स्थूल एक जरा सूक्ष्म। क्या 2 घटनाएं, एक तो ये जो सांस है, जैसे ही विकार जागा, भय जागे, वासना जागे, ईर्ष्या जागे, क्रोध जागे, जैसे ही जागा सांस अपनी स्वाभाविकता खो देगा, जरा सा तेज हो जाएगा, जरा सा भारी हो जाएगा, कुदरत का नियम है, और जैसे ही विकार दूर हुआ फिर स्वाभाविक हो जाएगा। ये हमारे विकार के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात उन लोगों ने देखी जो कि शरीर और चित्त के सारे क्षेत्र को देख गए। और एक बात, शरीर के स्तर पर कोई ना कोई संवेदना शुरू होती है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होता है, विद्युत चुंबकीय, तो कोई ना कोई संवेदना होती है शरीर पर। ये स्वभाव उसका, क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, यहां तक कि कोई एक चिंतन भी जागे, कुछ भी मन पर जागेगा शरीर पर उसकी संवेदना होगी। ये जो व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया उसको ये बात बहुत अच्छी तरह पता लग गई। तो कहता है सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, चित्त पर जो कुछ धारण किया वो संवेदना के साथ ही बहाव शुरू हुआ उसका। बस बात पकड़ में आ गई, आसान हो गया ना। अमूर्त क्रोध को, अमूर्त वासना को, अमूर्त ईर्ष्या को साक्षी भाव से देखना आसान नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है। लेकिन अगर वो प्रयत्न करे, थोड़ा सा भी प्रयत्न करे, जैसे हम कहते हैं 10 दिन के शिविर में आकर के ही प्रयत्न कर ले जरा सा सीख जाए, तो सांस को देखना सीख जाएगा और शरीर पर होने वाली संवेदना को देखना सीख जाएगा। इनको देखना आसान और मन के विकारों को, अमूर्त विकारों को देखना कठिन। तो अगर हम सांस को देख रहे हैं, विकार जागा है और हमने ये स्वीकार कर लिया इस समय विकार जागा है, इतना तो स्वीकार कर लिया, पर उसको देख नहीं पा रहे हैं, सांस को देखने लगे, शरीर पर होने वाली संवेदना को देखने लगे, तो हमने पलायन नहीं किया, हमने अपने मन को और किसी बात में लगाया था तब तो पलायन किया था, अब पलायन नहीं किया, क्योंकि ये सांस और ये शरीर की संवेदना ये उस विकार का ही भाग है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ मन में जागा हुआ विकार, उसी सिक्के के दूसरी तरफ ये सांस और ये संवेदना। तो अगर सांस और संवेदना को देख रहे हैं तो हम उस विकार के आमुख होकर के काम कर रहे हैं, उसे दूर नहीं भाग रहे, और सांस और संवेदना को देखते देखते हम देखते हैं जो विकार जागा था उसका उन्मूलन होना शुरू हो गया, उसकी जड़ निकलनी शुरू हो गई। ये जब रास्ता मिला तो सरल हो गया सबके लिए। सांस को देखो, संवेदना को देखो, साथ साथ ये स्वीकार करो कि इस समय मेरे मन में विकार जागा है, बस इतना ही, और विकार को देखने का प्रयत्न नहीं, केवल इतना है कि विकार जागा है, सांस कैसा है, इस समय संवेदना कैसी है, बस ये देखना आया आया कि रास्ता मिल गया मुक्ति का। यही काम सीखा यहां आकर के, तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये काम हम सीख रहे हैं तो घर जाकर के भी सुबह शाम जो इसका अभ्यास करेंगे इसका जीवन में प्रभाव आना चाहिए ना। क्योंकि ये तो होगा नहीं कि 10 दिन के शिविर के बाद घर में जाकर के कभी क्रोध आएगा ही नहीं, कभी द्वेष आएगा ही नहीं, ईर्ष्या आएगी नहीं, राग आएगा नहीं, वाह, अरे सब आएंगे, उनकी जड़ें नहीं निकली अभी। और ये भी नहीं कि क्रोध आया और तुरंत सांस देखने लगे, तुरंत संवेदना देखने लगे और वो खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, इस आशा से काम नहीं करना। लेकिन मानो जैसे पहले क्रोध आ जाता था अनचाही बात होने पर, अब विपश्यना 10 दिन करने के बाद घर जाओगे तो वैसी अनचाही बात होने पर क्रोध आएगा, पुरानी आदत है, क्रोध आएगा और होश भी नहीं रहेगा कि सांस देखें कि संवेदना देखें। 9 बार ऐसा होगा तो 1 बार ऐसा जरूर हो जाएगा कि जैसे ही क्रोध जागा, होश आया, सांस देखें संवेदना देखें, सांस देखें संवेदना देखें, उससे छुटकारा पा लिया। 10 बार क्रोध जागने पर 1 बार अगर हमको सांस और संवेदना देखनी आ गई, अरे बहुत बड़ी जीत हो गई, पहले तो उसी में रोल करते थे, कभी देखना सीखा ही नहीं, अब जीत हो गई। 10 बार में 1 बार तो हम सांस और संवेदना को देखने लगे विकार जागते ही, यही बढ़ते बढ़ते 2 बार देखने लगेंगे, 10 में से 4 बार देखने लगेंगे, 10 में से 10 बार देखने लगेंगे। अभ्यास की बात है, अपने मानस के स्वभाव को पलटना है और वह बार 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 भावित होते 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 हम स्वभाव को पलट देंगे। ये हमारा स्वभाव कैसे बिगड़ा, ये विकारों का स्वभाव भावित होता चला गया, अनचाही हुई कि द्वेष जगाया, मनचाही हुई कि राग जगाया, और अंतर मन की गहराइयों में तो अनचाही मनचाही अनचाही मनचाही इन संवेदनाओं पर होती है और वो होती रहती है होती रहती है, वो घटना भवित होती रहती है, घटना घटती है, हम राग जगाते हैं, हम द्वेष जगाते हैं, राग की घटना द्वेष की घटना भवित हो रही है भवित हो रही है, बार बार वो घटना हो रही है, और यीशु को कहते हैं भावित हो गई, बहुलीकृत हो गई, बढ़ने लगी बढ़ने लगी, अब पलट रहे हैं उसको। संवेदना जागी है, सुखद है कि दुखद है, हम नहीं राग जगाते, हम नहीं द्वेष जगाते, तो राग विहीनता के जो क्षण हमें प्राप्त हुए उन्होंने उसको भवित किया। अब राग विहीन की अवस्था भवित हो रही है, संवेदना तो है राग विहीन, संवेदना तो है द्वेष विहीन, वो घटना भवित होती है, एक बार हुई, दो बार हुई, दस बार हुई, बार बार होते 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 वो भावित होने लगी, तो अभ्यास करने पर होगा ना, होने ही लगेगा। ऐसा नहीं होता है तो कहीं कोई गलती है। क्रोध भी आया, अनचाही घटना हुई, क्रोध आया, उसमें भी सुधार होना चाहिए। होश नहीं आया और क्रोध चल रहा है तो उसमें भी कुछ सुधार है। क्या सुधार है? पहले क्रोध आने पर कितनी देर तक क्रोध में सुलगते रहता था, अब देखिएगा जितनी देर पहले सुलगता था उससे कम देर में ही क्रोध के बाहर निकल आया। सांस नहीं देखा, संवेदना नहीं देखी, फिर भी कम देर में निकल आया। मानो 8 घंटे तक पहले एक घटना घटने पर क्रोध आया और 8 घंटे तक उस क्रोध में सुलगता रहा, व्याकुल रहा, अब देखिएगा 6 घंटे में ही समाप्त हो गई बात। फिर देखिएगा 4 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में, बिना ही सांस देखे, बिना ही संवेदना देखे, ये क्या हुआ? इसमें क्या चमत्कार की बात हुई? चमत्कार कुछ नहीं, नियम है कुदरत के बंधे बंधाए। सुबह शाम जब ध्यान करता है तो यही तो ध्यान करेगा ना, सांस को देखता है, संवेदना को देखता है, सांस को। अब क्रोध जागा है तो क्रोध जागते ही सांस तेज हुआ, क्रोध जागते ही धड़कन बढ़ी, क्रोध जागते ही गर्मी बढ़ी, क्रोध जागते ही तनाव आया, बेचैनी आई। ये जो शरीर में जो कुछ हुआ वो बिना प्रयत्न किए ही बीच बीच में क्रोध में बह जा रहा है, बीच बीच में कोई एक क्षण आ जाएगा, सांस को देख लेगा, क्योंकि अभ्यास कर रहा है ना, सुबह शाम रोज अभ्यास करता है, सांस को देख लेगा, संवेदना को देख लेगा, फिर उसी में बह जा रहा है, फिर कोई एक क्षण ऐसा आएगा, सांस को देख लेगा, संवेदना को, फिर बह जा रहा है। ये जो एक एक क्षण बीच में आता चला गया और बिना प्रयास के आता चला गया, अब वो स्वभाव इस स्वभाव में पलटने का काम शुरू कर दिया, इसलिए बीच बीच में अपने आप बिना प्रयास के ही सांस देख लिया, संवेदना देख ली, फिर बह जा रहा है, सांस देख लिया, तो ब्रेक लगा। वो गाड़ी जो इतनी तेजी के साथ चल रही थी उसको बीच बीच में ब्रेक लगे, ब्रेक लगे, अरे तो इतनी तेज रफ्तार की जो चल रही थी, ब्रेक लगाना ही उसकी रफ्तार को कम करने लगा। वो गाड़ी जो 8 घंटे चलती अब 6 घंटे में रुक गई, 4 में रुक गई, 2 में रुक गई। ये जांच के देखेंगे कि पहले उसी घटना के घटने पर जितनी देर में क्रोध में व्याकुल रहता था उससे कम समय तक क्रोध में रह करके बाहर निकल जाता हूं कि नहीं, ऐसे जांच के देखिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ, तो भाई कहीं गड़बड़ है, या तो ये औषधि ठीक नहीं है, तुम्हारा रोग वैसे के वैसे रहा। औषधि ठीक हो तो तुमको लेनी नहीं आई, दोनों में से एक बात हुई। तो भाई औषधि तो ठीक है, हजारों नहीं लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग पिछले 2500 वर्षों में इसका उपयोग करके लाभ उठा चुके, आज हजारों लाखों लोग इसका उपयोग करके लाभ उठाते हैं, तो औषधि में कोई दोष नहीं, मेरे लेने में कहीं दोष है। तो अपने मार्गदर्शक को पत्र लिख करके या मिल करके समझो कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई। अक्सर गलती क्या होती है, बार बार दोहराते हैं, फिर समझ लेना चाहिए कि साधक को विपश्यना कैसे करनी चाहिए इसे तो भूल जाता है और संवेदनाओं का खेल खेलने लगता है। सुखद आई तो बड़े बड़े खुशी के मारे नाचने लगा, अरे देखो कैसा प्रवाह मिल गया, कैसा प्रवाह मिल गया सारे शरीर में, गुरु जी कहते हैं धारा प्रवाह मिली हमको, मिल गई, देखो धारा प्रवाह मिल गई, धारा प्रवाह मिल गई, और वो बंद हो गई। फिर स्थूल संवेदना आई तो रोता है बड़ा, अरे इतनी बढ़िया धारा प्रवाह मिलती थी, ऐसा आनंद आता था, फिर खराब हो गई साधना। तो मानो वो अपनी साधना को अच्छी है कि बुरी है इसको मापने का मापदंड यही माने बैठा है, सुखद आए तो अच्छी है, दुखद आए तो बुरी है। विपश्यना बिल्कुल नहीं समझा। 50-50 शिविर बैठ करके भी कोई आदमी हमारे पास रोता हुआ आता है, गुरुजी क्या करें, अब तक तो ऐसी संवेदना चलती थी कि आनंद ही आनंद, कुछ दिनों से क्या हो गया, वो सारी बंद हो गई, अब तो केवल स्थूल ही स्थूल है, क्या हो गया गुरुजी, कुछ आप कीजिए। अरे बावला आदमी, न वो अच्छी थी न ये बुरी है, तुझे समता के साथ देखना सिखाया कि तू ये खेल खेलने लगा संवेदना का। अरे ये तो दिन रात करता था, आंख में कोई रूप देखा अच्छा लगा तो खुशी से नाचने लगा, बुरा लगा तो व्याकुल हो गया, ऐसे शब्द, ऐसे गंध, ऐसे रस, ऐसे स्पर्श, अब इसी प्रकार शरीर की संवेदना, सुखद लगी खुशियों से नाचने लगा, दुखद लगी रोने लगा, फर्क क्या पड़ा? ये प्रश्न करने का क्या लाभ हुआ तुझे? ये बात साधक नहीं समझता है तो जीवन में कोई लाभ आने वाला नहीं है। सुबह शाम घंटे भर बैठेगा, वो भी संवेदनाओं का रसा स्वादन करेगा, सुखदाय तो सुख भोग लिया, दुखदाय तो दुख भोग लिया, भोगता भाव से घंटे भर बैठा रहा, कुछ लाभ नहीं होगा। ये बात समझ में आ जाएगी, भोगता भाव से निकल करके हमको दृष्टा भाव में प्रतिष्ठित होना है। हम घंटे भर दृष्टा भाव में नहीं रह सके, ये अलग बात है, लेकिन लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट है कि जब जब भोगता भाव आवे उसे पलट कर फिर कैसे दृष्टा बना ले, भोगता भाव आया कैसे दृष्टा बना ले। तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा, क्रोध आया है और बेचैनी आई, धड़कन आई, तनाव आया, गर्मी आई, तो बेचैनी है। अगर वो उस बेचैनी को देख करके और द्वेष जगाता है तो क्रोध के बाहर कैसे निकलेगा, तो क्रोध को क्रोध बढ़ता चला जाएगा ना। और ये सीख गया कि क्रोध आया है और भीतरी तनाव, खिंचाव, धड़कन आई है, इसको समता से देख भाई, ये अनित्य है, अनित्य, तो क्रोध निकलेगा और क्रोध की जड़ें निकलेंगी, तो साधना ही ठीक से नहीं करेगा तो उसका परिणाम अच्छा कैसे आएगा। तो बार बार दोहराते हैं कि कहीं ये संवेदना का खेल न खेलने लगना, कहीं उसका रसा स्वादन नहीं करने लगना, उसको यही जानना कि जो जागा है वो अनित्य है, देखता हूं कितनी देर रहती, ये धड़कन बढ़ी है ना, ये बढ़ी हुई धड़कन कितनी देर रहती है, ये तनाव आया है ना कितनी देर रहता है, ये गर्मी आई है ना कितनी देर रहती, देखूं, बस जहां उसको देखते 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 वो बदलनी शुरू होगी, तो ओ अनित्य है, अनित्य है, और क्रोध भी ऐसे अनित्य है, अनित्य, वासना भी ऐसे अनित्य है, अनित्य निकलती चली जाएगी। काम ठीक से करेंगे तो उसका परिणाम आएगा ही, निश्चित रूप से आएगा। बहुत महत्वपूर्ण काम शुरू किया, जब से जन्मे आंख खुली बहिर्मुखी रहे, बाहर ही बाहर देखा, बाहर ही बाहर देखा, तो एकांगी दर्शन किया। भारत के पुरानी भाषा में कहते थे एकांतिक दर्शन है, एकांतिक दर्शन माने एक ही एंगल से सच्चाई को देख रहे हैं। जब आदमी एक एंगल से, एक आयाम से किसी सच्चाई को देखता है, एक डायमेंशन से देखता है, तो आंशिक सत्य प्रकट होता है उसके सामने, और वो भिन्न भिन्न एंगल से देखता है, भिन्न भिन्न आयामों से देखता है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखता है, तो उसका संपूर्ण सत्य सामने आने लगता है। आंशिक सत्य जब तक सामने आता है तो भ्रम पैदा करता है, भ्रांति पैदा करता है, आदमी उलझा ही रहता है, वो ठीक समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। और जैसे जैसे संपूर्ण सत्य सामने आना शुरू हो जाएगा, भ्रांति दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसे उदाहरण से समझाया गया कि पांच जन्म के अंधे लोगों को, जन्म के अंधे हैं, इन पांच जन्म के अंधे लोगों को एक हाथी के पास खड़ा किया कि तू बता भाई ये हाथी कैसा है, आंख से तो अंधे हैं बेचारे कैसे बताएं, तो अंगुलियों से टटोल टटोल के समझना चाहते हैं हाथी कैसा है। एक के हाथ में हाथी की टांग आ गई, उसको टटोल टटोल के देखता है और अपना फैसला करता है हाथी कैसा है, खंबे जैसा है, उसके लिए हाथी खंबे जैसा है। दूसरे के हाथ में उसकी पूंछ आ गई, उसको टटोल टटोल के देखता है, कहता है नहीं नहीं हाथी तो ब्रश जैसा है, झाड़न झाड़ू जैसा है, उसके लिए झाड़ू जैसा है। तीसरे के हाथ में हाथी का दांत आ गया, उसे टटोल के, अरे खूंटे जैसा है। ऐसे पांचों के हाथ में शरीर का कोई ना कोई अंग हाथी का आया और उसने अपना फैसला दे दिया। अपनी जान सच है, वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सच्चाई से कितना दूर है, क्योंकि आंशिक सत्य है, संपूर्ण सत्य उसके सामने नहीं आया। ऐसे हमारा सारा जीवन आंशिक सत्य में बीतता है तो भ्रांति में बीतता, हम सच्चाई नहीं समझ पाते, जरा से भी नहीं समझ पाते। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखे तो उसी को भारत की पुरानी भाषा में कहा अनेकांत, अनेकांत दर्शी हो गया। एकांत दर्शी भ्रम में पड़ा रहेगा, अपनी हानि करेगा, औरों की हानि करेगा। अनेकांत दर्शी भ्रम के बाहर निकल जाएगा, अपना कल्याण करेगा, औरों का कल्याण करेगा। धीरे धीरे ये एकांत शब्द भी ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया जिनके लिए दर्शन ही प्रमुख है, दार्शनिक मान्यता प्रमुख है, ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया जिनको संप्रदाय ही प्रमुख है, तो ये कैसे एक अनेकांत हो, ये तो भूल गए और न जाने इसका क्या क्या अर्थ करने लगे। क्या अनेकांत, घटना बाहर घटी है उसको हम देख के समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा हुआ बाहर, ये जो ऐसा हुआ बाहर तो भीतर क्या हुआ भाई। एक दृष्टि अपनी ओर भी डालें, एक दृष्टि बाहर डाली, एक दृष्टि अपनी ओर डाली, तो एक एकांत नहीं है, अब दूसरा भी एक पहलू हमारे सामने आया। ऐसे ही फिर इस दृष्टि से भी देखेंगे, जैसे किसी आदमी ने गाली दी, गाली दी तो मेरे भीतर क्या होने लगा, इसको देखा, आगे बढ़ते बढ़ते इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे कि उस आदमी के अंदर समा गए, जैसे वो कैसे देख रहा है इस सारी बात को, वो कैसे देख रहा है, कैसे अनुभव कर रहा है, यूं भिन्न भिन्न आयाम से देखना शुरू कर देंगे, अरे सच्चाई सामने आ जाएगी। तो भ्रांति नहीं रहेगी, तो विकारों के बाहर निकलना आसान हो जाएगा। ये काम जो शुरू किया, पहले अपने भीतर की सच्चाई तो देख, बाहर की घटना को तो रोज ही देखता था, बाहर के वस्तु व्यक्ति घटना को, अब अपनी सच्चाई की ओर तो देख। जिस दिन अपनी ओर देखने की आदत पुष्ट होने लगेगी, तो पहली बात तो ये होगी कि जब जब व्याकुल होगा, तब तब ये स्वीकार करेगा इस व्याकुलता का आधा कारण तो बाहर की घटना है और आधा कारण मेरे भीतर है, क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया की। ये समझ में आने लगेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी आधी मांट ली, 50-50, चलो 50% तो अपनी गलती स्वीकार की, कुछ सुधरेगा और आगे बढ़ेगा इस रास्ते पर। तो इस अवस्था पर पहुंचना ही होगा जहां कहेगा कि मेरी व्याकुलता का 100% कारण मेरे भीतर है, बाहर नहीं, जरा भी नहीं। जैसे मेरे सुख का कोई कारण बाहर नहीं, सारा कारण मेरे भीतर है, वैसे मेरे दुख का कोई कारण बाहर नहीं, सारा मेरे भीतर है। ये खूब समझ में आने लगेगी, बुद्धि से नहीं, अनुभूति से समझ में आने लगेगी। वैसे बुद्धि के स्तर पर भी समझेगा ही, किसी ने बहुत हानि कर दी मेरी, बहुत हानि कर दी, मैं मामला ले गया कोर्ट में, और कोर्ट तो कोर्ट, सभी देशों में ऐसा होता है, भारत में भी है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, यूं सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 7 वर्ष लग गए। 7 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फैसला देता है कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष उस व्यक्ति का है, उसको ये दंड दिया जाना चाहिए। ठीक फैसला दिया उसने, अपना ठीक फैसला दिया। लेकिन मैं अगर समझदार हूं तो जरा सोच के देखूं, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं और देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है मेरा कसूर नहीं, तो सचमुच मेरा कसूर नहीं। मेरा जब कसूर ही नहीं, तो आखिर कुदरत का भी तो कोई कानून होगा, या परमात्मा कहो तो परमात्मा का भी तो कोई कानून होगा। जब मेरा कसूर ही नहीं, तो ये 7 वर्ष तक मुझको व्याकुल क्यों बनाया? 7 वर्ष तक मेरी नींद हराम हो गई, मेरा खाना हराम हो गया, मेरा चैन हराम हो गई, क्या हालत हुई मेरी? मेरा कुछ कसूर ही नहीं और मैं 7 वर्ष तक तड़पता रहा। विपश्चित होगा तो खूब समझ में आएगा, ये जो 7 वर्ष तड़पता रहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, बाहर की घटना की नहीं। किस बावलेपने में प्रतिक्रिया किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, व्याकुलता उस वजह से है। ये बात खूब समझ में आने लगेगी, खूब समझ में आने लगेगी। अब तो अपनी व्याकुलता बाहर देखता है ना, तो बाहर देखता है तो भीतर की बात नहीं समझ में आती। जैसे जैसे अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाई देखना शुरू करेगा, सारी बात बिल्कुल समझ में आनी शुरू हो जाएगी। किस तरह से यह सारा शरीर परमाणुओं का पुंज कैसे काम करता है, किस तरह से ये मानस और उसके 4 खंड, ये विज्ञान जानने वाला जानने का काम करता है, ये संज्ञा पहचानने वाली और मूल्यांकन करने वाली मूल्यांकन करने का काम करती है, ये वेदना संवेदनशील होने का काम करती है, और ये संस्कार कैसे प्रतिक्रिया करने का काम करते हैं, और इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, कैसे इंटरेक्शन चलता है, कैसे क्रॉस करंट चलते हैं, खूब देखना शुरू कर देगा तो बात खूब समझ में आएगी। जितना जितना उसको गहराई के साथ अनुभूतियों के स्तर पर देखेगा, उतना उतना समझ में आएगा, मैं जिम्मेदार हूं भाई, मैं जिम्मेदार हूं, खूब समझ में आएगा। किसी आदमी ने मुझे गाली दी, मैं व्याकुल हुआ, गाली दी व्याकुल हुआ, वो भी हमारी गलती, पर यहां गलती समाप्त नहीं की। उसने गाली दी मुझको व्याकुल बनाने के लिए गाली दी, वो मेरा दुश्मन है, मुझको सुखी नहीं देखना चाहता, मुझको दुखी करना चाहता है, इसलिए गाली दी, उसने अपमान किया और मैं व्याकुल हुआ। उसने एक बार गाली दी मुझे एक बार व्याकुल बनाने के लिए, मैंने क्या हालत बना ली अपनी, वो तो चला भी गया, वो भूल भी गया होगा। मैं बार 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 उस घटना को अपने मानस के रंगमंच पर फिर बार बार दोहराता हूं, उसने गाली दी, उसने मुझे ऐसी गाली दी, उसने मेरा ऐसा अपमान किया, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, बार 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 उसे दोहराता हूं, जितनी बार दोहराता हूं उतनी बार क्रुद्ध होता हूं, जितनी बार क्रुद्ध होता हूं उतनी बार व्याकुल होता हूं, बढ़ा ही जा रहा हूं। कभी कभी तो ऐसा बावलापन कि कोई आदमी कहता मेरा ऐसा अपमान किया, जन्म भर नहीं भूलूंगा। अरे मत भूल, किस पर एहसान करेगा, जन्म भर तड़पेगा, भीतर ही भीतर तड़पेगा, करेगा क्या? कोई कहता 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा, 7 जन्म तड़पेगा भाई, समझता नहीं ना, अपने भीतर कभी देखा नहीं कि क्या कर रहा हूं, अपने आप को तड़पा रहा हूं ना, अपने आप को व्याकुल बना रहा हूं ना, बात नहीं समझ में आएगी। खूब गहराई से देखिएगा, सारी बात समझ में आएगी, क्या हो रहा है ये सारा, मैं किसके, मुझको बुरा लगा, क्या बुरा लगा, मैंने क्रोध पैदा किया, किसके प्रति क्रोध पैदा किया, खूब समझ में आएगा। एक उदाहरण से समझाते हैं कि कोई बहुत अच्छा कारीगर हो, कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, एक कैनवस पर अपनी ब्रश से और रेखाओं से एक चित्र खींचता है, बड़ा अच्छा कारीगर है, कलाकार है, बड़ा सुंदर चित्र उभर करके आया, बड़े खूबसूरत व्यक्ति का। उसको देखते 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 पागल हो गया, मुझको ये व्यक्ति चाहिए, एकदम मजनू की तरह पागल हो गया, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, रे इसके बिना तो ये लोग उसको समझाएं तू बड़ा पागल है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, तेरी कल्पना से तेरे द्वारा निर्माण किया हुआ ये चित्र, और तू कहता है कि इसके साथ रहूंगा, मुझको ये चाहिए, तो कैसा पागल है, उसके नहीं समझ में आता, ये चाहिए रे करता जाएगा। ऐसे ही वो कलाकार अपनी तूलिका से कुछ रेखाएं खींचता है, बड़ा भयावह चित्र खड़ा हो गया, उसको देख के कांपने लगा, अरे ये दैत्य है, ये दानव है, मुझे खा जाएगा, कोई बचाओ रे, मुझे खा जाएगा। फिर लोग समझाएं बड़ा पागल है, तेरी कल्पना, तेरी तूलिका, तेरे द्वारा निर्माण किया हुआ, बिल्कुल जिसमें सार नहीं इस तरह का, और तू ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है। हम उस आर्टिस्ट को, उस कलाकार को मूर्ख कहें, पागल कहें, आसान है कहना, अपनी ओर नहीं देखते, अपनी ओर देखेंगे तो पता लगेगा वही मूर्खता हम करते हैं, वही पागलपन सारे जीवन करते हैं और व्याकुल हुए जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष पहले मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, कोई अनचाहा काम कर दिया, मेरी संज्ञा ने तुरंत कहा बहुत बुरा आदमी है, संज्ञा ने कहा बहुत बुरा आदमी है, और कहते ही मैंने अपने भीतर उसकी एक तस्वीर बना ली, उसकी एक मूर्त गढ़ ली, वो बड़ा बुरा आदमी, वो बड़ा दुर्जन आदमी। 20 वर्ष तक जब तक उसे याद करता रहा, इस मूर्त को और पुष्ट करता रहा, वो व्यक्ति बड़ा दुर्जन है। 20 वर्ष के बाद देखा उसे, इन 20 वर्षों में देखा ही नहीं, अरे 20 वर्ष में तो बदल के न जाने कितना बड़ा संत हो गया होगा। और उस वक्त भी जिस वक्त तुमने कहा कि ये दुर्जन है, वो सचमुच दुर्जन था कि तेरी संज्ञा ने कहा दुर्जन है, लेकिन दुर्जन तेरे, तूने उसकी दुर्जन होने की मूर्त गढ़ ली, तो जैसे ही उसे देखा तेरे मन में यही भाव आया बड़ा दुर्जन है, तो क्रोध जागा, घृणा जागी, तू किस पर क्रोध कर रहा है, किस पर घृणा कर रहा है, ये तेरी बनाई हुई मूर्त सामने आई ना, वो व्यक्ति कैसा है तुझे कुछ नहीं मालूम, तूने उसकी एक मूर्ति गढ़ी और वो तेरे सामने आई, और उस मूर्ति को लेकर के तू क्रोध पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, तो उस कलाकार में और तेरे में क्या अंतर है रे, तेरी बनाई हुई मूर्ति है ना, तेरी काल्पनिक मूर्ति है ना। ऐसे ही 20 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, कुछ काम किया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगते संज्ञा ने कहा बड़ा संत है, तो बहुत भला आदमी है, तो बहुत भला आदमी है, अब उसकी मूर्त गढ़ ली, बहुत भला आदमी वो, अरे उसका क्या कहना, बड़ा सज्जन है, बड़ा संत है, 20 वर्ष तक वो मूर्त संवारता रहा, बहुत संत है, बड़ा संत है। 20 वर्ष बाद उसे देखता हूं, तब तक न जाने कितना दुर्जन हो गया वो, उसको देखते ही बड़ा संत है ये, तो किसको संत मान रहा है रे, तेरे मन में उसकी जो मूर्त तूने 20 वर्षों से गढ़ी, वो मूर्त सामने आई ना, तेरी गढ़ी हुई मूर्त सामने आई ना, काल्पनिक मूर्त सामने आई ना, और रिएक्ट उस पर कर रहा है ना, प्रतिक्रिया उस पर कर रहा है ना, समझेगा तो करेगा नहीं ऐसी गलती, नहीं समझता है तो सारे जीवन भर यही काम करता है। कोई कहता है मैं क्या करूं, इस आदमी को जब देखता हूं तब मुझे गुस्सा आ जाता, मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं ना आए, इस आदमी को देखते ही गुस्सा आ जाता है। अच्छा भाई, तो जरा सोचकर देख तू, इस आदमी को देखते तुझे गुस्सा आता है, इसका मतलब उसकी जो जीव रसायन है, उसमें जो बायोकेमिकल्स हैं, वो तेरे बायोकेमिकल से सूट नहीं करते, उसके बायोकेमिकल की वजह से तेरे भीतर गुस्सा आता है। सचमुच ऐसा है, अगर उसके बायोकेमिकल लोगों में गुस्सा पैदा करने वाले हैं, तो जो जो देखे सबको गुस्सा आना चाहिए ना, सबको नहीं आता ना, एक ही व्यक्ति को एक ही समय 5 लोग देख रहे हैं, और 5 लोग 5 तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, हो सकता है किसी को उस पर वात्सल्य भाव आवे, हो सकता है किसी को उसके उसके प्रति वासना जागे, हो सकता है किसी को उसके प्रति प्यार जागे, हो सकता है किसी को उसके प्रति भय जागे, जिस किसी ने उस व्यक्ति की जैसी मूर्त गढ़ी उसी प्रकार प्रतिक्रिया कर रहा है, तो बात समझनी चाहिए ना, हम प्रतिक्रिया किसकी कर रहे हैं, अपनी संज्ञा ने जो कुछ तैयार किया उसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये बात जब ठीक से समझ में आने लगेगी तो सारा रहस्य खुलता चला जाएगा, और ये भीतर इसलिए देख रहे हैं कि सारा रहस्य खुलता चला जाए, कहीं कोई पागलपन रह न जाए। जैसे एक ही व्यक्ति को 5 लोग देखते हैं, 5 तरह की प्रतिक्रिया होती है, ऐसे ही एक ही व्यक्ति एक ही घटना को 5 बार देखता है और उसकी 5 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। एक ही प्रकार के शब्द मेरे कान में आए और 5 बार आए, 5 समय आए, और वही शब्द हैं लेकिन मैं प्रतिक्रिया 5 तरह की कर रहा हूं। एक उदाहरण से समझें, कभी कभी बात उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है, उदाहरण उदाहरण है केवल। कोई शाम का समय है, मैं अपने 2-4-5 साधकों के साथ फुटपाथ पर चल रहा हूं और यूं चलते हुए अंधेरा सा है, फुटपाथ पर कोई आदमी लेटा था और किसी एक साधक ने उसको ठोकर लगा दी। ठोकर लगते ही वो चीखा चिल्लाया, अंधे हो तुम्हें सूझता नहीं, ये शब्द मेरे कान में पड़े, गाली के शब्द हैं, अंधे हो सूझता नहीं, लेकिन अच्छा भी पश्चिम हो तो अंदर देखूंगा। कि जैसे ही वो कान में शब्द पड़े, भीतर एक गुदगुदी होने लगी, सारे शरीर में बड़ा पुलक रोमांच हुआ, बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है, गाली दे रहा है और हमको यहां गुदगुदी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक घटना घटी। दूसरी घटना, अब दूसरे दिन दूसरी बार मैं अकेला जा रहा हूं उसी फुटपाथ पर और मुझसे ठोकर लग गई। ठोकर लगी और वो चीखा, अंधे हो सूझता नहीं, वही शब्द आए कान में। अब देखता हूं कोई गुदगुदी नहीं। अब तो बड़ी अप्रिय संवेदना है, शरीर में बड़ी दुखद संवेदना है। क्यों भाई, शब्द तो हुई है कान में, अब क्या हो गया? दूसरी घटना, तीसरी घटना, फिर अपने वही 4-5 साधकों के साथ जा रहा हूं, फिर मुझसे ही ठोकर लगी, फिर वो उसी तरह चीखा, अंधे हो सूझता नहीं। अब देखता हूं बड़ी दुखद संवेदना, वो जो इसके पहले दुखद संवेदना आई थी जब अकेले में ठोकर लगी और अकेले में वो चिल्लाया, इससे इस बार की संवेदना और ज्यादा दुखद, और ज्यादा व्याकुलता है। अच्छा, तीसरी घटना घटी, चौथी घटना, फिर अकेला जा रहा हूं, उदाहरण के लिए बातें बताते हैं, अकेला जा रहा हूं, फिर मुझसे ठोकर लगी, फिर वो चीखा उसी तरह, अंधे हो सूझता नहीं, और मैंने पहचाना, या मेरी संज्ञा ने पहचाना, ये तो मेरे पुत्र की आवाज है, मेरा पुत्र है, और मुझे कहता अंधे हो सूझता नहीं। अब देखिएगा कि जो संवेदना बड़ी दुखद थी, अब और कई गुना अधिक हो गई, बड़ी दुखद हो गई। फिर उदाहरण उदाहरण है, पांचवी बार फिर उन्हीं 4-5 साधकों के साथ जा रहा हूं, वैसे ठोकर लगी, वैसे ही वो चीखा, अंधे हो सूझता नहीं, वैसे ही संज्ञा ने पहचान लिया, ये तो मेरा पुत्र है। अरे अभी तो दुख का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा अनंत हो गया दुख। क्यों भाई, 5 बार एक की तरह की घटना घटी, 5 बार वही शब्द कान में पड़े और ये 5 बार 5 तरह की संवेदना हुई, 5 तरह की प्रतिक्रिया हुई। क्यों हुआ? अच्छा विपश्चि साधक होगा, खूब समझेगा विश्लेषण कर करके, इसलिए कर रहे हैं सारी साधना, खूब समझेगा। पहली बार क्या हुआ, हर आदमी एक पागलपन करता है जब से जन्मता है और आगे बढ़ता है, होश संभालता है, ये दुनियादारी की भाषा में कहते हैं, होश संभालता है, होश संभालता है कि होश खोता है कौन जाने। जरा बड़ा हुआ कहता है होश संभाल लिया हमने, तो क्या करता है, पहला काम ये करता है कि अपनी एक मूर्त गढ़ता है, मैं गोइन का, अरे गोइन का, ऐसा अपनी मूर्त आप गढ़े तो बढ़िया से बढ़िया गढ़ेगा, खूब बढ़िया, ऐसा गोइन का, ऐसा गोइन का, ऐसा गोइन का, और अपने मन मंदिर में उस मूर्त को स्थापित करता है और उस मूर्त के प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर लेता है। अपनी गढ़ी हुई मूर्त है, उसमें सच्चाई का नामो निशान नहीं, अपने भीतर मूर्त गढ़ करके स्थापित कर ली और गहरी आसक्ति पैदा कर ली, ये गोइन का, ऐसा गोइन का, ऐसा गोइन का। पहली बार क्या हुआ, जब किसी ने कहा अंधे हो सूझता नहीं, तो हमारी संज्ञा ने पहचान के कहा, ये शब्द तो गाली के हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन गाली तुम्हें नहीं दे रहा है, ये गाली तेरे साधक को दे रहा है। तो भीतर एक गुदगुदी होती है, अरे मैं विपश्यना का महान आचार्य, मुझसे ऐसी गलती हो जाए, मैं किसी को ठोकर मार दूं, ये तो बच्चे हैं अभी सीखा नहीं इन्होंने, हम बार बार कहते हैं सजग रहो सजग रहो, फिर भी ठोकर मार दी, ठोकर मारी तो गाली सुननी पड़ी ना, मुझसे थोड़ी ऐसा हो सकता है। अब जो मूर्त बनाई थी उस पर थोड़ा सा रंग रोगन और आ गया, उस पर पॉलिश आ गई, अरे गोइन का क्या कहना, गोइन का क्या कहना, तो गुदगुदी हुई सारे शरीर में, बड़ी सुखद संवेदना हुई। दूसरी बार वही गाली उसी आदमी ने उसी तरह से दी, तो संज्ञा कहती है गाली है और अब के तेरे शिष्यों को नहीं है, तुझको गाली है, मुझको गाली, अरे कोई मुझे गाली निकाले। आप देखो गुदगुदी कहां, सारे शरीर में दुखद ही दुखद संवेदना, और चीखता हूं बदले में, क्या हो गया, मर गया, तुम्हें खून आ गया, हो क्या गया, कहे चीज, अरे पहले गुदगुदी आई बड़ा खुश हुआ और अब तो ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है। खूब देखेगा, अंदर से विपश्ची होगा तो अपने आप को खूब समझेगा। तीसरी बार क्या हुआ, 2-4-5 साधक साथ है ना, तो एक और पागलपन हर आदमी करता है, अपनी बढ़िया मूर्त गढ़ करके अपने मन मंदिर में स्थापित करके उसके प्रति आसक्त होता है, यही बहुत बड़ी मूढ़ता है, पागलपन है। एक इससे बड़ी मूढ़ता करता है कि बहुत बढ़िया अपनी मूर्त गढ़ करके दूसरों के मन में भी स्थापित करता है, गोयनका, अरे ऐसा गोयनका, ऐसा गोयनका, अरे गोयनका का क्या कहना, गोयनका का क्या कहना। जिससे मिले उसके मन में अपनी इमेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो अपनी इमेज क्रिएट करके उसके मन में, अरे इसके लिए कितने नाटक करता है, कितने तमाशे करता है, किसी तरह से लोगों के मन में स्थापित हो जाए, गोयनका तो बड़ा संत, गोयनका तो ऐसा विपश्यना का आचार्य, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे तो क्या हुआ तीसरी बार? तीसरी बार जब उस आदमी ने कहा अंधे हो सूझता नहीं, तो हमारे जो चार पांच साधक थे उनके मन में जो हमने इमेज स्थापित की, और उस इमेज के प्रति एक एक व्यक्ति में जो इमेज स्थापित की उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली, तो पहले तो एक ही मूरत जो अंदर स्थापित की थी उसका भंजन हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब ये पांच मूरत भंजन हुई एक साथ, हमारे साधकों ने देखा, अरे अच्छा गुरु है, हमको कहता सजग रहो, और खुद देखो ठोकर लगा दी और गालियां पड़ी ना, तो जो मूरत उनमें स्थापित की थी वो टूटी, बड़ा दुख हुआ, पांच गुना दुख हो गया। अरे पांच आदमियों के मन में जो मूरत स्थापित की थी, आदमी कहता है मुझको कोई अकेले में गाली दे दे, कोई हर जाने सह लूंगा किसी तरह। अरे भरी सभा में 100 आदमियों के सामने गाली दे दी, क्या फर्क पड़ा भाई, गाली तो गाली है ना, तुझको अकेले में दे कि 100 आदमियों के सामने दे, फर्क क्या पड़ गया, समझेगा, अच्छा भी पश्चिम होगा, क्या फर्क पड़ गया। इन 100 आदमियों के मन में मैंने जो इमेज क्रिएट की थी वो टूटी ना, 100 आदमियों ने जान लिया कि इस आदमी में दोष है, इसलिए इसको गाली सुननी पड़ती है, तो बड़ा दुख हुआ। ये बावलापन तीसरी बार में। अब चौथी बार में क्या होता है, हर आदमी मैं कहकर के अपनी मूरत स्थापित करता है, सो तो करता ही है, एक और मूरत स्थापित करने लगता है, मैं का दायरा जरा सा बढ़ाता है, अब मेरा, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरा अमुक, ये मेरा करके जिसको मेरा कहता है, अब उसकी मूरत घटता है, बहुत खूबसूरत मूरत घटता है। अरे मेरा पुत्र, ऐसा पुत्र, विपश्यना की आचार्य का पुत्र, तो बड़ा विपश्यनावादी होगा, बड़ा धर्मवादी होगा, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी ऐसी सेवा करेगा, कहेगा पिताजी आप तो रिटायर हो, हम सब सेवा करेंगे, हम देखेंगे आपको, मेरा पुत्र ऐसा। बड़े उस पुत्र के प्रति बड़ी आसक्ति पैदा कर ली उसकी इमेज क्रिएट करके, और अब वो गाली देता है, अंधे हो। चौथी बार संज्ञा ने कहा ये जो गाली आई ना, ये तेरे बेटे की ओर से है, मेरा बेटा मुझे कहे अंधे हो सोचता नहीं। अरे कोई अनजान आदमी गाली भी निकाल दे, दुख तो होता है, इतना दुख नहीं होता, बेटा गाली निकाले जिसको लेकर के इतने स्वप्न सजोए, खूब समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे विपश्यना के रास्ते पर आगे बढ़ोगे, एक बात ये समझ में आने लगेगी कि जिसको मेरा कह करके मैं बहुत प्यार करता हूं, अंदर देखना शुरू करेगा तो ये बात समझ में आएगी, मैं किसी को प्यार नहीं करता, धोखा है, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये अमुक है, मैं खूब प्यार करता हूं, सब झूठ। मैं प्यार अपने आप से करता हूं, मैं प्यार अपने स्वप्नों से करता हूं, अपनी इच्छाओं से करता हूं, अपनी अभिप्साओं से करता हूं। कोई व्यक्ति, पुत्र हो कि पत्नी हो कि पति हो कि भाई हो, वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बन गया, मेरे स्वप्नों को पूरा करने में सहायक हो रहा है, इसलिए मुझे प्रिय लगता है। वही व्यक्ति जिसको मेरा कहकर बहुत प्यार किया, वही व्यक्ति मेरे स्वप्नों को तोड़ने वाला हो जाए, सारा प्यार खत्म। भगवान के जीवन काल की एक घटना, देश का राजा प्रसेनजीत भगवान के संपर्क में आया, तो धर्म के संपर्क में आया, विपश्यना के संपर्क में आया, खूब विपश्यना करने लगा, और जहां परिवार के किसी एक व्यक्ति में विपश्यना चली जाए, धीरे धीरे सारे परिवार के सदस्यों में जाने ही लगती है, ऐसा नियम है धर्म का, तो उसके परिवार के लोग भी विपश्य हो गए। उसकी पत्नी पटरानी मल्लिका, वो भी अच्छी विपश्यना शादी का हो गई, दोनों एक साथ बैठ करके महल के एक कमरे में ध्यान का कक्ष बनाया, उसमें दोनों ध्यान करें रोज, और काफी आगे बढ़े ध्यान में। तो एक दिन प्रसेनजीत जब ध्यान से उठे तो पूछता है मल्लिका को कि आज मेरे मन में ध्यान करते करते एक प्रश्न उठा कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, तो यह भी उठा कि तुझे सबसे प्रिय कौन है, तो बता तुझे सबसे प्रिय कौन है संसार में। वो कहती है अजीब बात है, ध्यान करते करते मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, तो मैं समझ गई सबसे प्रिय मैं ही हूं, मुझे सबसे प्रिय मैं ही लगती हूं और कोई नहीं लगता, सच्चाई ये है। अगर वो विपश्यी साधक नहीं होता तो कहता इसका सिर उतार लो, ये रानी कैसी है, इतनी स्वार्थी है, कहती है मैं ही प्रिय लगती हूं मुझको और कोई नहीं प्रिय लगता, मैं भी प्रिय नहीं लगता इसको, लेकिन वो विपश्यी साधक है ना, खूब समझता है। तो कहता भाई यही उत्तर मुझे मिला, मैंने भी अपने अंदर झांक के देखा तो मुझे यही लगा कि मुझको मैं ही प्रिय हूं, बाकी सारे लोग मेरे स्वप्नों में मेरे सहायक हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं, अन्यथा प्रिय नहीं है। दोनों के दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और कहा, महाराज आज तो ऐसा हुआ ध्यान में और ऐसी वार्तालाप हुई। भगवान ने कहा, साधु साधु साधु, तुम्हारा कल्याण हो गया। जिस दिन आदमी अंतर्मुखी होकर के इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि मैं कितना आत्म केंद्रित स्वय केंद्रित जीवन जी रहा हूं, मुझको मेरे सिवाय और कोई प्यारा नहीं लगता, मुझको मेरे स्वप्नों के सिवाय, मेरी तृष्णाओं के सिवाय, मेरी कामनाओं के सिवाय कोई प्यारा नहीं लगता, उस दिन उसका होश जागा। अब उसमें स्वार्थ बुद्धि निकलनी शुरू हो जाएगी, आत्म केंद्रित जीवन टूटना शुरू हो जाएगा, आत्मभाव अनात्म भाव में बदलना शुरू हो जाएगा, अहंकार निकल के निरहंकार की अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। पहले इस सच्चाई को स्वीकार तो करे, अनुभव से जाने तो, खाली बुद्धि से स्वीकार करने से नहीं, अंदर देखते देखते देखते। तो यही हुआ, उस पुत्र के प्रति इतनी गहरी आसक्ति। क्या आसक्ति, किस बात की, कि ये मेरे स्वप्नों को पूरा करने में सहायक होगा। कोई मां पुत्र जन्मा है और अभी से स्वप्न लेना शुरू कर दिया, मेरा पुत्र मेरा पुत्र, और जब बड़ा होगा 25-1 बरस का हो जाएगा तो कोई बहू ले आएगा घर में, अभी बहू जन्मी भी नहीं, कल्पना करती एक बहू ले आएगा और मेरा पुत्र तो बड़ा आज्ञाकारी होगा, बड़ा विनीत भाव होगा, बड़ा धर्मवान होगा, तो खोज करके जो बहू लाएगा वही बड़ी धर्मवती लेकर आएगा, बड़ी अच्छी बहू लेकर आएगा, ऐसी बहू आएगी ऐसी बहू आएगी, कल्पना कर रहा है, कर रही है, उसके प्रति आसक्ति, उसकी एक इमेज क्रिएट कर रही है। और 25 वर्ष में सचमुच 25 वर्ष के बाद बहू ले आया घर में, और बहू ऐसी आई जो चोटी पकड़ के झाड़ू से बात करे, आप बेचारी की सारी तस्वीर खत्म हो गई ना, अरे बहू ऐसी आए बहू ऐसी आए, सारा स्वप्न जो बहू को लेकर के किया था वो सारा भंग हो गया, उसके रोने का क्या ठिकाना। ऐसे ही वो बहू जब छोटी है तब से सोचना शुरू किया, किसी ने बताया बड़ी हो जाओगी पराए घर जाओगी वहां ये मिलेगा ये मिलेगा ये, अरे एक माँ भी मिलेगी जो इस माँ से ज्यादा प्यार देगी, ऐसी माँ मिलेगी, ऐसी बेचारी आई और ऐसी माँ आई कंकाली, ऐसी माँ मिली जो गालियों बिना बातें ना करे, तो बेचारी का सारा सपना टूटा ना। कौन जिम्मेदार है इन स्वप्न बनाने के, हम अपना स्वप्न बनाते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं, उसके साथ आसक्ति पैदा करते हैं, वो इमेज टूटती है, हम व्याकुल होते हैं, कौन जिम्मेदार है। हम सारी की सारी, हमारी सारी आसक्ति अपने आप के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, और वो पूरी होती नहीं, हम व्याकुल होते हैं। माता पिता चाहते हैं बड़े हो जाएंगे तो ये बेटे और बहू हमारी बहुत सेवा करेंगे, और बेटे और बहू स्वप्न लेते हैं कि अरे ये बूढ़ों के खटखट में कहाँ पड़ेंगे, बड़े होकर के जरा अपना पांव जम जाए तो एक बंगला बने न्यारा। सिनेमा में यही सुनते आए पढ़ते आए, अपना अलग बंगला लेके छोड़ो इन बूढ़ों को, बड़े आराम से रहेंगे। वो अपना स्वप्न ले रहे हैं, हम ऐसे रहेंगे, ये अपना स्वप्न ले रहे हैं, तो दोनों का स्वप्न तो पूरा होगा नहीं ना, रोएगा ही ना आपस में, स्वप्न टूटेगा। तो जब तक दो भाई हैं और एक ही स्वप्न दोनों के हैं, एक ही दिशा में दोनों के स्वप्न चल रहे हैं, बड़ा प्यार है। जब दोनों के दो तरह की दिशा में चलने लगे, इसका स्वप्न इस प्रकार का ये पूरा होगा तो इसका खंडित होगा, इसका इस प्रकार का ये पूरा होगा तो इसका खंडित होगा, भाइयों का सारा प्रेम खत्म, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो भाई क्यों हो गए, कि प्यार भाई से नहीं है, प्यार पुत्र से नहीं है, पुत्र वधु से नहीं है, पिता से नहीं है, माँ से नहीं है, प्यार अपने आप से है और प्यार अपनी कामनाओं से है, अपने स्वप्नों से है। ये बात विपश्ची साधक शीघ्र देखने लगता है, देखने लगता है, उसके कल्याण का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि वो अपने दुख का कारण समझने लगा, मेरे दुख का सही कारण ये है, ऐसा समझने लगा तो खूब समझ में आएगा कि चौथी बार जो मैं ज्यादा व्याकुल हुआ वो इसलिए हुआ कि मैंने स्वप्न संजोया अपने पुत्र के प्रति, और वो पुत्र मुझे गाली निकालता है, औरों के प्रति संजोया नहीं ना कोई स्वप्न। कोई अनजान आदमी गाली निकालता है तो दुख तो हुआ, पर उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि उस अनजान आदमी के साथ मेरा कोई स्वप्न नहीं है कि ये मेरा स्वप्न पूरा करेगा, ये मेरी कामनाओं को पूरा करने में सहायक होगा, ऐसा रंच मात्र भी नहीं था। और इसके प्रति तो बहुत है, ये बड़ा हो जाएगा तो ऐसी मेरी सेवा करेगा, ये करेगा ये करेगा, अब वो तो बिल्कुल विपरीत, बड़ा दुखी हुआ। पांचवी बार और ज्यादा क्यों दुखी हुआ उसे भी समझेगा, एक और पागलपन करता है, मेरा 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 कहकर के उसकी मूरत अपने मन में स्थापित करता है, सो तो करता है, औरों के मन में भी स्थापित करने लगता है, जानता भी है कि इसमें खोट है, फिर भी कहता मेरा पुत्र, अरे क्या कहना, ऐसा आज्ञाकारी है, ऐसा विपश्ची है, ऐसा है ऐसा है, इसके मन में स्थापित की, इसके मन में स्थापित की, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा अमुक, मेरा अमुक। और अब वही पुत्र जिसकी इमेज मैंने पांच साधकों के मन में स्थापित की, बरसों लगाए, अब वो पांचों इमेजेस उनका भंजन हुआ ना, वो पुत्र इनके सामने मुझे गालियां निकालता है। अरे भाई, तू मेरा पुत्र है, घर में गाली निकाल देता तो ठीक था, फिर भी सह लेते, तो इन पांच आदमियों के सामने, मेरे साधुओं के सामने मेरी इज्जत खराब करता है, इनके सामने गाली निकालता है, होश नहीं है ना। अकेले में निकाले कि बाहर निकाले, तू क्यों दुखी हो रहा है इसको देखना, तूने अपने भीरत मूर्त मूर्त गढ़ी ना। वो चित्रकार जो चित्र बना करके उस पर पागल हो गया, ऐसे ही हम मूर्तिकार मूर्ति बना बना करके पागल हो रहे हैं। ये बात विपश्चित साधक को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी कल्याण के रास्ते पड़ गया, आनी चाहिए। अगर ये संवेदनाओं का खेल खेलता चला गया, सुखद आए और खुशियों से नाचने लगा, दुखद आए रोने लगा, तो सारे जीवन भर साधना करता जाए उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो आदमी ये समझ गया कि सुखद आए कि दुखद आए, मुझको साक्षी भाव से देखना है, तो सारा रहस्य खुलना शुरू हो जाएगा। ये देख परमाणुओं का पुंज है, ये देख चित्त के चार हिस्से हैं, ये विज्ञान है, जानने का काम करता है, ये संज्ञा है, पहचानने का काम करती है और मूल्यांकन करती है, वेदना संवेदनशील होने का काम करती है, ये संस्कार प्रतिक्रिया करने का काम करता है। और देख इसका कैसे प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, कैसे संवेदना आ रही है, कैसे संवेदना हमें प्रभावित करती है, उस संवेदना की वजह से विकार और जागता है, संवेदना बढ़ती है, संवेदना बढ़ती है विकार बढ़ता है, विकार बढ़ता है संवेदना बढ़ती है, सारा प्रपंच समझ में आने लगेगा। अब संवेदना आएगी तो विकार नहीं बढ़ाएगा, साक्षी भाव से देखेगा तो संवेदना अपने आप हमको सिर पर चढ़ने वाले नहीं होगी, तो विकार अपने आप सिर पर चढ़ने वाले नहीं होंगे, दोनों दुर्बल होते 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 समाप्त हो जाएंगे। ये सारा काम सफलता में, सफलता के लक्ष्य में तब पूरा होगा जबकि हम विपश्यना ठीक से कर पाएंगे। और ठीक से करने का ये कि हम भोक्ता भाव से बाहर निकल करके दृष्टा भाव में स्थापित हों और उसके अनित्य स्वभाव को समझते रहें। अनित्य है, ऐसी संवेदनाएं तो अनित्य है, ऐसा विकार जागा तो अनित्य है, देखें तो कितनी देर रहता है, देखें तो कितनी देर रहता है, यूं उसमें पुष्ट होते होते अपने स्वभाव को पलटना शुरू कर देंगे तो विपश्यना बड़ी कल्याणकारिणी हो गई, बड़ी कल्याणकारिणी हो गई। जितने हमारे भीतर दुर्गुण हैं, जितने हमारे भीतर खोट हैं, जितने हमारे भीतर मैल हैं, वो सारे के सारे हमारे मुक्ति के लिए बाधक हैं। मुक्ति जब तक ये खोट नहीं निकलेंगे तो मुक्ति काहे की, हमको किसने रस्सी से बांध रखा है कि हथकड़ियों से बांध रखा है कि बेड़ियों से बांध रखा है, हम विकारों से बंधे हुए हैं। जब तक विकारों से बंधे हुए हैं तब तक हम बंदी हैं, भाव भाव इसी तरह बंदी रहेंगे, एक जन्म के बाद दूसरा, एक जन्म के बाद दूसरा, और हर जन्म में व्याकुलता ही व्याकुलता, व्याकुलता ही व्याकुलता, ये सारे के सारे जो दुर्गुण है वो निकलते चले जाए, चित्त निर्मल होता चला जाए और सद्गुणों से बढ़ता चला जाए, तो यही सद्गुण हमारे सहायक हो गए, हमको भव सागर पार करने में बहुत बड़े सहायक हो गए। इसीलिए 10 तरह के ऐसे सद्गुण हैं जिनको पुरानी भाषा में पारमी कहा, पुण्य पारमी, ऐसे पुण्य माने वो जो हमारे चित्त को पुनीत करें, उसको पुण्य कहा जाता था। चित्त को पुनीत करने वाली 10 बातें जो कि हमको भव सागर से पार उतरने में सहायक बनती है, उनको पारमिताएं कहा, पारमी कहा, समझें उसे, काम आएंगी आगे जाकर के, कैसे एक एक पारमी हमें बढ़ानी है इसको खूब समझेंगे। एक पारमी है निक्षमा पारमी, माने निष्क्रमण करता है, जिस किसी को अंतिम अवस्था तक पहुंचना है उसे निष्क्रमण करना ही पड़ेगा, घर बार छोड़ करके, सन्यासी हो करके, सन्यासिनी हो करके, और वो अनंत की अवस्था पर पहुंचेगा। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम घर बार छोड़ने लायक नहीं, माने इस लायक नहीं, यही हमारा मानस अभी नहीं बना, तब ये पारमी हमारी कैसे पूरी हो। तो पुराने लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला, उन दिनों तो बड़े शिविर होते थे, 7 सप्ताह के शिविर होते थे, अब आजकल भाग दौड़ की बात आ गई तो 7 सप्ताह को घटा करके 1 महीना किया, कुछ काम बनाओ और कम किया, 20 दिन किए, 15 दिन किए, 10 दिन किए, 10 से और कम किया, 7 दिन किया, देखा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, तो एक नियम बना दिया कि 10 दिन का तो शिविर कम से कम, लंबा हो तो और अच्छी बात, तो कम से कम 10 दिन के लिए तो घर छोड़ करके निष्क्रमण पारमी पूरा कर रहे हैं ना, भले सिर नहीं मुड़ाया, कपड़े नहीं बदले, फिर भी भिक्षु का सा जीवन जीने आए हैं ना, और भिक्षु का क्या जीवन होता है, मैं मेरा कहने के लिए कुछ नहीं, सब छोड़ आया, तो यहां आता है तो न ये मकान मेरा, न ये भोजन मेरा, ये न मेरा, ये मेरा कुछ नहीं, तो जैसे अपने अहंकार को पिघलाता है। मुक्त अवस्था का मतलब यही हुआ कि अहम भाव बिल्कुल समाप्त, आत्म भाव बिल्कुल समाप्त, अनात्म भाव में स्थापित हो जाता है, मैं मेरा समाप्त होता है। तो घर बार छोड़ के जब सन्यासी बनता है, खाना भी किसी दूसरे का दिया हुआ खाता है, हाथ में पात्र लेकर के भिक्षाम देही, तो अहम पिघलेगा ना, अहम कैसे रहेगा। वो अहम पिघलाने के लिए ये निष्क्रमण पारमी जरा जरा से बढ़ाने के लिए 10 दिन शिविरों में लोग आते हैं, यहां मुझे भिक्षु की तरह रहना है। यही कारण है कि जब आदमी ये समझता है कि मैं दूसरों के दिए हुए दान पर जी रहा हूं, भिक्षु दूसरों के दिए हुए दान पर जीता है, उसका अपना कुछ नहीं, तो यहां 10 दिन रहते हुए किसी ने दान दिया, इसकी वजह से मुझे भोजन मिलता है, सुबह का भी दोपहर का भी, किसी ने दान दिया उसके भोजन पर पल रहा हूं। अगर यहां रहने के, खाने के, पीने के, अरे ये धर्म सिखाने के चार्जेस तो कोई क्या देगा और कोई क्या लेगा, उसे न भी ले फिर भी रहने का तो लगता है, इतना पैसा देना ही पड़ेगा भाई, खाने का तो लगता है, इतना देना ही पड़ेगा, बिजली का, पानी का, इसका उसका लगता है, तुमको 10 दिन के लिए इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो होटल हो जाती ना, फिर होटल का चार्ज दिया ना, तो उसके निष्क्रमण पारमी कैसे बनती। इसलिए इस परंपरा में खाने रहने माने धर्म सिखाया, उसकी तो बात ही क्या, खाने रहने खर्च उसका भी कोई खर्चा नहीं, वो इसीलिए कि उसके मन में ये भाव आए, मैं पराये दान पर जी रहा हूं, पराये दान पर जी रहा हूं। अगर पैसा दिया तो अहंकार जागेगा ही कि भाई 10 दिन है, आप लोगों ने इतना पैसा लिया है, कैसा खाना देते हो, देखो नमक कितना कम है, वो मसाला कितना कम है, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं दिया, अरे भाई अब तो भिक्षा पात्र में जो पड़ गया सो पड़ गया, हम तो भिक्षु हैं, हम तो भिक्षुणी हैं, जो मिला है वही खाना है, स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, हमें तो ये 10 दिन जीवित रहना है, शरीर को आहार चाहिए इसलिए ले रहे हैं। तो ये भिक्षु का भाव मन में आया, भिक्षुणी का भाव मन में आया, तो बात बन गई ना। निष्क्रमण पार में बिना घर, एक सन्यासी का भेष किए बिना ही, सन्यासिनी का भेष किए बिना ही 10 दिनों तक भिक्षु भिक्षुणी का जीवन जी करके निष्क्रमण पारमी के घड़े में कुछ बूंदे तो डाली। ये 10 घड़े हैं पारमियों के, और आदमी उसमें एक एक बूंद डाल के उनको पूरा करता है, पूरा हुआ 10 के 10 तो मुक्त हो जाएगा। तो निष्क्रमण पारमी पूरा होने में सहायता मिली यहां आकर के। दूसरी पारमी शील की पारमी, शील पालन घर में भी कर सकता है, लेकिन कठिनाई होती है ना, परिस्थितियां ऐसी है, किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई शील भंग हो जाएगा, और यहां तो सारा वातावरण ऐसा तपोभूमि का, और तपोभूमि का वातावरण सो तो कार्यक्रम ऐसा, सुबह 4-4:30 बजे से रात को 9-9:30 बजे तक कहां चोरी करने जाएगा, कहां हत्या करने जाएगा, कहां व्यभिचार करने जाएगा, कहां नशा पदा करने जाएगा, भूल अगर होगी भी तो कहीं झूठ बोल जाएगा, बोलेगा तो किसी बात को बढ़ा के बोल देगा, किसी को घटा के बोल देगा, मार्गदर्शक पूछेगा तो उसको उल्टा सीधा जवाब दे देगा, तो शील भंग हुआ। तो उसी के लिए कम से कम आपस में तो बात नहीं करे, 9 दिनों तक पूर्ण मौन। अरे तो 9 दिनों का तो हमारा बड़ा अच्छा शील हुआ ना, निष्कलंक शील हुआ, हमने कोई गलती नहीं की 9 दिनों तक, पारमी बढ़ी ना, ये पारमी बढ़ने का मौका मिल गया। ऐसे 10 दिन के शिविर में आए तो ये हमारे शील की पारमी बढ़ाने का एक मौका मिल गया। और तीसरी पारमी वीर्य की पारमी, पुरानी भाषा है, माने प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ये पारमी घर में रहते हुए भी आदमी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, किस बात के लिए करता है, अपने जीवन यापन के लिए करता है, गृहस्थ है, करना भी चाहिए, कोई दोष की बात नहीं, लेकिन वो पारमी नहीं बनती। जो प्रयत्न, जो परिश्रम, जो पुरुषार्थ हमारे चित्त को निर्मल करता है, वो पारमी का काम। यहां 10 दिन यही काम करते हैं, सांस को देखते हैं तो वर्तमान में जीते हैं, भूतकाल से छुटकारा, भविष्य से छुटकारा, जो हुआ उसको वैसे यथाभूत देखा, संवेदना को तो भूतकाल से छुटकारा, भविष्य से छुटकारा, इस समय की यथाभूत जैसा है वैसा देखा, तो राग नहीं जगाया, द्वेष नहीं जगाया। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे चित्त को वर्तमान में स्थापित करके, उसके अनित्य स्वभाव को देख करके दृष्टा भाव में स्थापित करना, इसका प्रयत्न कर रहे हैं, तो सही प्रयत्न कर रहे हैं, तो वीर्य की पारमी अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। शील की पारमी, वीर्य की पारमी, प्रज्ञा की पारमी, ये जो श्रुतमयी प्रज्ञा है ये तो कहीं प्राप्त हो जाती, यहां आने की जरूरत नहीं थी। चिंतनमयी प्रज्ञा है, सुन करके घर में उसका चिंतन करते, कहीं हो जाती। ये भावनामयी प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। अपनी अनुभूति से ही 3.5 हाथ की काया में प्रत्यक्ष ज्ञान, 10 दिन तो यही किया ना, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान जगा रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान जगा रहे हैं, अनुभूति वाला ज्ञान जगा रहे हैं, अपनी प्रज्ञा भावनामय प्रज्ञा जगा रहे हैं, ये पारमी पूर्ण हो रही है। एक और पारमी होती है शांति की पारमी, सहनशीलता, सहिष्णुता। एक एक आदमी अलग अलग बैठ के ध्यान करे, फिर भी 100 आदमी भी एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, 200 भी बैठ के ध्यान करते हैं, कभी हॉल में ध्यान कर रहा है, समझदार आदमी है तो इस बात का ख्याल रखेगा कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति के ध्यान में कोई विक्षेप नहीं आ जाए, मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे और लोगों का ध्यान भंग हो जाए, बड़ा सजग रहता है। लेकिन हर आदमी नहीं सजग रहते, किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई हरकत कर दी और उससे मेरा ध्यान भंग हुआ, नहीं होश होगा तो चिड़चिड़ाएगा, कैसे लोग हैं, किस तरह से खांसता है, देखो किस तरह से डकार लेता है, देखो किस तरह से क्या करता है, तो बड़ा गुस्सा आएगा भीतर, फिर होश आएगा, अरे यहां गुस्सा जगाने थोड़ी आया, बेचारा रोगी होगा, इस मारे ऐसे करता है, या अज्ञानी है, उसे होश नहीं है कि वो औरों का तप भंग कर रहा है इसलिए करता है, तो उस पर दया जागे, करुणा जागे, क्रोध क्यों जगाए। तो क्षमा के पार में, शांति के पार में, सहनशीलता के पार में इसको पूरी करने का मौका मिलता है। और एक पार में सत्य की पार में, सच्चाई की पार में, और किसी से तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो अपने मार्गदर्शक से बोलेगा, बड़ा सजग होकर बोलेगा, जो पूछे उसको सही सही जवाब दूंगा, सत्य की पार में है। लेकिन ये सत्य की पार में उससे भी गहरी सत्य की पार में है कि सारा मार्ग सत्य ही सत्य का, हर कदम सत्य के सहारे, सत्य के सहारे, किम सचिया राहो वे आदि सच जुगादि, सच है भी सच नानक हो सी भी सच, कहीं कल्पना का नामो निशान नहीं, इस क्षण क्या सच्चाई प्रकट हुई, इस क्षण मैंने क्या कल्पना आरोपित की, वो नहीं, इस क्षण क्या सच्चाई अपने आप प्रकट हुई, आपो आप निरंजन सोई, उस सच्चाई के साथ कदम 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 बढ़ता है तो परम सत्य तक पहुंच जाएगा। इस तरह अपने सत्य की पारमी को बढ़ाया जा रहा है, सत्य की पारमी को बढ़ाया जा रहा है। एक और पारमी होती है अधिष्ठान की पारमी, दृढ़ निश्चय करता है, खूब दृढ़ निश्चय करता है, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आते ही पांच शील दिए तो दृढ़ निश्चय करता है, चाहे जो कुछ हो जाए यहां रहते हुए पांचों शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करूंगा, और पालन कर जाता है। यहां आने पर उसको कहा जाता है कि 9 दिन तक मौन रहना है, दृढ़ निश्चय करता है मौन ही रहूंगा 9 दिनों तक, नहीं अपने किसी साथी से बात करूंगा। ये पारमी बढ़ती है, अधिष्ठान की पारमी बढ़ती है, और जितने नियम है उन सब का पालन करूंगा, पालन करता है, अधिष्ठान की पारमी बढ़ती है। और फिर तो बैठा देते हैं घंटे घंटे भर अधिष्ठान में, हाथ नहीं खोलना, पांव नहीं खोलना, आंख नहीं खोलना, हजार रोता है लेकिन फिर भी नहीं खोलता, तो नहीं खोलता तो उतनी उतनी अधिष्ठान की पारमी पुष्ट होती जाती है, बड़ी कल्याणकारिणी पारमी है। कोई व्यक्ति जब कभी बुद्ध बनेगा, अरहंत बनेगा, मुक्त बनेगा, ये पारमी बहुत आवश्यक है, बहुत कल्याणकारिणी होगी। जैसे ये व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम जब ये बुद्ध बना, जिस रात को बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसे, तो पेड़ के नीचे बैठा है और पालथी मार के बैठ के उसने दृढ़ संकल्प किया, अधिष्ठान लिया कि मैं अपना हाथ नहीं खोलूं, पांव नहीं खोलूं, आंख नहीं खोलूं, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाऊं, ये दृढ़ निश्चय है, घंटे भर का नहीं, 2 घंटे का नहीं, जब तक मुझे बुद्धत्व ना प्राप्त हो जाए, और न जाने कितना समय लगेगा। तो जब तक बुद्धत्व नहीं प्राप्त हुआ तब तक उस अधिष्ठान को लेकर बैठा रहा, और ये पकी हुई पारमी नहीं हो और आदमी निर्णय करे कि मैं भी बैठता हूं ऐसे, जब तक बुद्ध न बन जाऊं तब तक पांव नहीं खोलूंगा, हाथ नहीं खोलूंगा, आंख नहीं खोलूंगा, और 10 मिनट में पीड़ा जागी, हाय रे, अरे छोड़ो छोड़ो, फिर बैठेंगे, अभी नहीं, समय ठीक नहीं है, यही करता रह जाएगा ना। ये पार में जितनी जितनी पुष्ट कर लोगे, देखोगे बहुत काम आई, बहुत काम आई, और काम आएगी, निश्चित रूप से काम आएगी। अगली पार में उपेक्षा पार में, उपेक्षा माने समता का भाव, तो इससे ज्यादा समता का भाव और कहां सीखेंगे। ये ऊपरी ऊपरी बुद्धि के स्तर पर समता का भाव तो चिंतन करके आदमी करता ही है, उसे क्या मिलेगा। अनुभूति के स्तर पर समता का भाव सीख रहे हैं, सुखद संवेदना आती है, अनित्य है भाई, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, समता का भाव आया। दुखद संवेदना आती है, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, समता का भाव आया। जो कुछ अनुभव हो रहा है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, समता का भाव आया। ये उपेक्षा की पार में पुष्ट हुए जाए, पुष्ट हुए जाए, बहुत कल्याणकारिणी, यही तो निर्मल करती है चित्त को। एक और पार में मैत्री की पार में कल सीखेंगे, माने मन में मंगल भाव जागे औरों के प्रति, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं जगाएं, द्वेष की जगह मैत्री जगाएं, करुणा जगाएं, वो मैत्री की पार भी यहां बिना आए भी आदमी कर सकता है। अपने घर में रोज चिंतन करे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अरे अपने पड़ोसी के साथ भी मैत्री भाव रखना चाहिए, तो ऐ पड़ोसी तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, यूं करता जाएगा। लेकिन मन के भीतर अंदर के हिस्से में तो उस पड़ोसी से झगड़ा है ना, तो अंदर ही अंदर कहेगा तू जन्म में जा, तेरा बुरा हो जाए। ऊपर से कहेगा तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। अरे जो भीतर वाला मन है ज्यादा बलवान है, और वही बनाता है संस्कार। वो संस्कार तो तुम्हारे मैत्री का नामो निशान नहीं, और ये ऊपर ऊपर के लेप लगाते हो मैत्री के, बात नहीं बनती। यहां 10 दिन किस लिए आते हैं कि चित्त को निर्मल करते करते 9 दिन तक चित्त को निर्मल करने का काम किया, 10वें दिन जितना भी चित्त निर्मल हुआ, अब मैत्री करना सीखेंगे, मंगल मैत्री, तेरा मंगल हो, तेरा भला हो, और संवेदनाओं के आधार पर करेंगे। तो अंतर मन से कर रहे हैं, बिना संवेदना को जाने हुए हम अपने चित्त को सुधारने का काम जब जब करेंगे, तब तब केवल बुद्धि सुधरेगी, कॉन्शियस माइंड सुधरेगा, हमारा अंतर्मन नहीं सुधर सकता। और जब भी इस संवेदना के साथ अपने मन को सुधारने का काम करेंगे तो अंतर्मन सुधरना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा अंतर्मन इन संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण जुड़ा रहता है, जब तक प्राण है तब तक जुड़ा ही रहेगा। तो इसके साथ करना कल सीखोगे। ये 9 दिन तक चित्त को निर्मल करने का काम, 9 दिन तक शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को जान लेने का काम नहीं करते तो मैत्री ठीक से नहीं कर पाते। तो कल ये मैत्री सीख करके इस पारमी को भी पुष्ट करने में अपना बल लगाएंगे। और एक पारमी दान की पारमी, बड़े महत्व की पारमी है। गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। गृहस्थ है तो किसी के सामने हाथ नहीं पसारे, वो उसको मेहनत करके, परिश्रम करके, ईमानदारी के साथ धन कमाना ही चाहिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, जो जो लोग आश्रित हैं उन सबके भरण पोषण के लिए उसे कमाना ही चाहिए। भिक्षु को कमाने की जरूरत नहीं, उसको धन संग्रह करने की जरूरत नहीं, लेकिन गृहस्थ को कमाना ही चाहिए। लेकिन बड़ी कठिनाई हो गई, जहां कमाना शुरू किया, जहां घर में धन आना शुरू किया, वहीं अहंकार बढ़ेगा। मैं कमा रहा हूं, मैं इतना होशियार, मैं इतना चतुर, मेरी वजह से कमाई होती है, बाकी लोग सब निठल्ले हैं, बाकी लोग सब मूर्ख हैं, ये अहंकार जागता है। अहंकार जागता है तो मुक्ति की दूसरी दिशा में जाने लगा। मुक्ति कहां से आएगी? मुक्ति तो अहंकार शून्य अवस्था को कहते हैं, आत्मभाव बिल्कुल समाप्त हो जाए, अनात्मभाव में स्थापित हो जाए, उसको मुक्त अवस्था कहते हैं। और यहां तो अहंकार जगाया जा रहा है, ये बेचारा कैसे मुक्त होगा? तो देश के समझदार लोगों ने एक रास्ता निकाला कि गृहस्थ को अपना अहंकार पिघलाने के लिए जो कमाए उसका एक हिस्सा औरों को बांटे ही, तो चिंतन बदल जाए। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं धन कमाने के लिए, वो केवल मेरे लिए नहीं कमा रहा, मेरे लिए तो ठीक, मुझको अपना भरण पोषण करना है, अपने परिवार का करना है, लेकिन केवल मेरे लिए नहीं, आखिर ये जो पैसा आता है समाज से आता है, बदले में मैं समाज को क्या देता हूं? ये भाव जागना शुरू हो तो अहंकार पिघले, जागे तो भी कम जागे, अहंकार कम होता जाए, देता है, बांटता है। पुरानी भाषा में दान भी नहीं कहा, उसे सम विभाग कहा, विभाग करता है और लोगों के साथ। तो जो कुछ मैं कमाता हूं उससे अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण कैसे हो जाए? यहां 10 दिन आएगा तो अब समझने लगेगा कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण कैसे हो जाता है। किसी भूखे को रोटी देते हैं तो कल्याण हो उसका, एक दिन की भूख मिट गई उसकी, कल फिर भूखा हो गया, फिर उसको रोटी की जरूरत पड़ गई। प्यासे को पानी दिया, कुछ घंटों के बाद फिर पानी चाहिए, प्यास उसके हमेशा के लिए नहीं बुझी। नंगे को कपड़ा दिया, कुछ महीने के बाद फिर नंगा हो गया, कपड़े फिर चाहिए। रोगी को औषधि दी, वो रोग निकल गया, कोई और रोग आ गया। ये सारे अच्छे हैं, नहीं करना ऐसा नहीं कहा जाता धर्म में कि ये सब काम मत करो, लेकिन विपश्यना करते करते ये होश आने लगेगा कि सब दानं धम्म दानं जिनाति, जितना दान किसी को दिया जाए वो सारे दान अच्छे हैं, पर इन सारे दानों में धर्म का दान सबसे ऊंचा दान। एक व्यक्ति को भी शुद्ध धर्म मिल गया, शुद्ध धर्म का रास्ता मिल गया, अरे सारे दुखों से मुक्त होने का रास्ता मिल गया ना बेचारे को। ये छोटे मोटे दुख दूर हुए फिर आए, दुख दूर हुए फिर आए, ये तो सारे दुखों से दूर हो जाएगा, भव चक्र से दुख से छुटकारा पा लेगा। इतना बड़ा दान, इसमें मैं कैसे सहायक हो जाऊं? तो 10 दिनों तक अपने यहां रहने का दान नहीं दे रहा। जो व्यक्ति ये सोच के दान देता है शिविर में आकर के, 10 दिन रहा तो इनका खाने का कितना लगा होगा, अरे 100-100 लगे होंगे, ये पानी वानी का क्या लगा होगा, इतने लगे होंगे, अच्छा क्या है आज का महंगाई है तो 200 लगे होंगे, 250 लगे होंगे, और क्या, दो ना 250 छुड़ाओ पिंड अपना, अरे क्या दान दिया रे तूने, होटल का बिल चुकाया ना फिर, नहीं मैं तो रहा भिक्षु की तरह किसी और के दान पर। अब मेरे मन में ये चेतना जागे कि भाई इसी तरह अन्य लोगों को भी मिले ना, तो मेरे पास जो धन है वो औरों के लिए, आगे भविष्य में जो साधक आने वाले हैं वो किस तरह से इसका लाभ उठा ले, इस मारे दान देता है शुद्ध चित्त से। लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, मैं उसमें कैसे सहायक हो जाऊं, अरे मेरे पास कम धन है तो कम दूं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन चेतना ये है, अच्छा मैं सेवा ही करूं, 10 दिन तक लोग मेरी सेवा करते रहे, मैं श्रम का दान देता हूं, ये दान पारमी बनती है, नहीं तो पारमी नहीं। ये 10ों पारमियों को याद रखेंगे और जब कभी भविष्य में 10 दिन के शिविर में आएंगे, खूब याद रख करके, एक एक पारमी को पुष्ट करने के लिए आया हूं। ये 10ों घड़े हैं, भले एक एक बूंद दो दो बूंद सब घड़े में डालनी है और सारे घड़े जब पूर्ण हो जाएंगे तो मुक्त हो जाऊंगा, ये समझदारी के साथ काम करना है। बड़ा कल्याणकारी है धर्म, न समझे तो उसका लाभ नहीं उठा सकता, समझ ले और उसके अनुसार चलना शुरू कर दे, अरे इससे बढ़कर और कुछ मंगलकारी है ही नहीं, इससे बढ़कर और कुछ कल्याणकारी है ही नहीं। आए हो, 9 दिन काम किया है, कल का दिन और यहाँ रहोगे, खूब लाभ उठाओ, खूब लाभ उठाओ, खूब समझो धर्म को, संप्रदाय से अलग करो इसे, दार्शनिक मान्यताओं से अलग करो इसे, कर्मकांडों से अलग करो इसे, ऐसा कुदरत का कानून है, ऐसा नियम है, ऐसा मान करके काम करोगे, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत् सर्व मंगलं, भवत् सर्व मंगलं, भवत् सर्वे मंगलं। फलहु फलहु फलहु, चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, फिर थोड़ी देर और ध्यान करेंगे, 5 मिनट विश्राम कर लें। Download from upnafm.com.